मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون। سورہ معارج کی ان آیات پر درس چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ بھی ایمان والے لوگ ہیں ان کی علامتیں بیان کی ہیں۔ میں بار بار اس مضمون پر بات کرتا ہوں کہ آج مذہب جو ہے چند رسومات کا نام رہ گیا ہے، علامات ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ جو علامات اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، دیکھو آپ کو اگر آپ کی کمپنی کی طرف سے کوئی کام آپ کے ذمے لگایا جائے، کوئی بھی دنیا میں ادارہ ہے، فوج کا ادارہ ہو، کوئی پرائیویٹ ادارہ ہو، تو اس میں بڑے ادارے جتنے بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہوں چاہے وہ گورنمنٹ کے ہوں، تو اس میں انکریمنٹ اور ترقی کے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں۔ ان اصولوں اور ضابطوں کی روشنی میں آپ کی فائل بننا شروع ہوتی ہے۔ بھائی یہ امپلائے ہے، اگر اس میں اس نے یہ بھی کیا، ٹائم پہ اس کی حاضریاں بھی پوری ہیں اور اس کی کوئی شکایت بھی نہیں ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کے اخلاق بھی ٹھیک ہیں، کوئی پھڈے کے واقعات بھی نہیں آئے، تو پوائنٹ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ لگے بندے ہوتے ہیں۔ اب تو اے آئی سے بھی کام لیا جا رہا ہے اس میں، تو جو شخص بھی آپ کو ترقی دینے والا ہوتا ہے، جب وہ آپ کی فائل بنا کے بھیجتا ہے تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، وہ دیکھتا ہے بھائی پازیٹو کتنے اور نیگیٹو کتنے۔ ایسا نہیں ہوتا آپ کو ترقی دینے سے پہلے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے آپ کے بارے میں پوچھا جائے، وہ کہتے ہیں بھائی اس کے 5-6 سال کا ریکارڈ نکال کے لاؤ، اور ریکارڈ ایک لگا بندہ ضابطہ ہے، اس لگے بندے ضابطے کے تحت دیکھا جائے گا کہ یہ ترقی کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ باہر ملکوں کے لیے جب ہم اپلائی کرتے ہیں نا، تو اب اے آئی سے بھی انہوں نے ویزے ریجیکٹ کرنا اور ویزے دینا شروع کر دیے۔ بہت سارے کنٹریز ہیں، میرا چونکہ بہت تجربہ ہے ملکوں میں سفر کا اور اپلائی کرنے کا، تو ان سب کے کسی کنٹری میں وہ ڈاکومنٹیشن کی ویلیو ہوتی ہے کہ ڈاکومنٹس آپ پورے کر کے دے دو تو ویزا لگے گا، نہیں کر کے دو، ایک بھی رہ گیا تو نہیں لگے گا ویزا۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے، وہاں جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے، میں پہلے بہت سوچتا تھا کہ یہ جو ویزے دینے کے لیے ان کی کونسلیٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تو سارا دن 20-20 لوگوں کا ڈیٹا چیک کرنا اور پھر کس کو ویزا دینا ہے نہیں دینا، تو پاگل ہو جاتا ہوگا یہ۔ کوئی پاگل نہیں ہوتا، اس کو پتا ہوتا ہے بھائی بینک اسٹیٹمنٹ دیکھنی ہے، ٹیکس دیکھنا ہے، اور پولیو سرٹیفکیٹ کا بعض ملکوں میں ٹی بی شی بی تو نہیں ہے، یہ سب سرٹیفکیٹ لگے ہوئے ہیں اس کی بھلا سے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ چیک کرے گا کہ یہ ٹی بی کا سرٹیفکیٹ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کو لیب میں بھیجو، ٹی بی میں خود بھی چیک کروں گا۔ اگر وہ ایسا کرنا شروع کر دے تو ایک ہی بندے کی فائل چیک کرے گا۔ بعض ملکوں میں نا آپ کا ٹی بی کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، تو اس میں ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں ڈرامے بازی بھی ہوتی ہے، تو انہوں نے ایک سسٹم بنا لیا کہ بھائی فلاں لیب کا ریزلٹ ہم مانیں گے، اس کے علاوہ نہیں مانیں گے۔ اس لیب والوں کو انہوں نے ٹائٹ کیا ہوا، یار کو دو نمبر ہی نہیں کرنا، تو فلاں لیب سے کروا کے لاؤ۔ اب جو ویزا دینے کے لیے بیٹھا ہے وہ دیکھتا ہے فلاں لیب کا سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے، بس کافی ہے۔ تو ایک لگا بندہ ضابطہ ہوتا ہے، آپ اس لگے بندے ضابطے کو کراس کرو گے تو وہ آپ کو کبھی بھی ویزا نہیں دے گا، کہے گا بھائی تم اس پہ اتر ہی نہیں رہے، میں اگر بادشاہ ہوں گا تو دے دوں گا، میں بادشاہ تھوڑی، میں تو ملازم ہوں۔ اب آپ جا کے ویزا دینے والے سے لڑ رہے ہو، پھڈا کر رہے ہو، دیکھ تو مجھے ویزا دے دے، مجھے امریکہ کا ویزا، ایموشنل بلیک میلنگ کر رہے ہو، جذباتی ہو رہے ہو، और कभी उसको अपनी हाजत बता रहे हो, लिल्ला फिल्ला दे दे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, मैं अपनी गली के गटर के ढकनों के लिए आवाज उठा रहा हूं यार, बुरे बुरे हालात हैं यार, वो दे देगा वीजा। कहेगा भाई जो एक मैयार बनाया है गवर्नमेंट ने, उस मैयार को पूरा करो, उसको पूरा नहीं करोगे। बाद मुल्कों में ये होता है कि भाई इंटरव्यू पे मत आ रहे, वो इंटरव्यू लेगा आपसे, उसमें भी स्पेसिफिक सवाल पूछेगा, उन सवाल के आप जवाब दे दो, वो दे देगा, नहीं देगा होगे तो चलो भाई निकलो यहां से। यूएसए के वीजे में अक्सर ऐसे ही, मैं गया हूं ना तो वहां जो वीजे की लाइन लगी होती है उसमें उन्होंने चंद सवाल पूछने होते हैं, उनका तमीज से जवाब दे दो तो वो दे देते हैं वीजा, नहीं दो तो कहते हैं आए बाएं शाएं करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग जाके ना बड़े फंटर बने हुए होते हैं, क्यों जा रहे हैं अमेरिका, मेरी बहन है इससे मिलने जा रहा हूं, अरे तेरी बहन यहीं आ जाएगी, वो ज्यादा उनका उनकी यही मकसद उनका कहने के होता है, कोई वैलिड रीजन बता भाई तू क्यों जा रहा है, अरे बहन है तो बहन से स्काइप पे बात कर ले वीडियो कॉल पे। तो मुझे, मैं ये क्यों मिसालें दे रहा हूं, मैं आपको मिसालें इसलिए दे रहा हूं कि दुनिया के भी कुछ उसूल और जाब्ते हैं तरक्की के, प्रोमोशन के, इंक्रीमेंट लगने के। आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाते हो तो उनकी एक रिक्वायरमेंट है हर यूनिवर्सिटी की, भाई कम से कम इंटर में इतनी परसेंटेज होगी तो मिलेगा दाखिला। आप कहीं भी वर्किंग वीजे पे जाते हो तो मुल्कों की कैद है, भाई 21 साल से कम वाले को हम नहीं लेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपने धांधली कर दी, 18 वाले को 21 लिख दिया, 21 वाले को 18, वो है लेकिन उसको डॉक्यूमेंट चाहिए पूरे, भाई हमें 21 साल वाला। अब आप ले गए जी 7 साल के बच्चे को आपने सऊदीया का वीजा, वर्किंग वीजा जी चाहिए, वो कहेंगे भाई इसका नहीं मिलेगा। कहने आप देखो यार उससे झगड़ रहे हो आप वीजा देने वाले से, यार जरूरत है भाई हमारे मुल्क में बड़े, 7 साल में अभी मैं पंचर की दुकान एक खोली है उस पर बिठाऊंगा इसको, सऊदी अरब में पंचर की दुकान खोली है उस पर 7 साल वाले को मैंने बिठाना है ताकि अभी से पंचर लगाना सीखे। आप घंटा तकरीरें कर लो उस पर असर पड़ेगा, कहेगा भाई मैं इसको वीजा दूंगा, मैं चौड़े में आऊंगा, रिक्वायरमेंट नहीं है ना, 21 साल से कम को नहीं मिलता वर्किंग वीजा। ये मैं इसलिए आपको मिसालें दे रहा हूं कि जैसे दुनिया के कुछ उसूल और जाब्ते हैं उसमें आपकी नहीं चलती, आप इमोशनल हो रहे हो, आप रो रहे हो, आप हा हू कर रहे हो, वो कभी मुतासर नहीं होगा। तो हम पता है क्या कर रहे हैं, अल्लाह ने जन्नतियों की कुछ अलामतें, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी करनी पड़ेगी, फिर अल्लाह कहता है तुम आखिरत में कामयाब। वो डॉक्यूमेंटेशन हम पूरी नहीं कर रहे, हा ही हू शोर मिचा मिचा के जन्नत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नबी से आशिक, मैं हा मैं रोता हूं रातों को, मैं चीखता हूं नबी की याद में, मुझे अहले बैत से मोहब्बत है, ये भी काफिर वो भी काफिर, जो ना माने वो भी काफिर, नबी के आशिक नबी से मोहब्बत, फिर रबीउल अव्वल में बत्तियां लग रही हैं, नाच रहे हैं, हा हा, लोग कहते हैं ये है मोहब्बत, इसको कहते हैं, फिर जुलूस निकल रहे हैं, फिर मातम हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर वो हो रहा है, दो देखने वाला तो कहेगा यार ये है असल में अहले बैत से और नबी से मोहब्बत करने वाले, रबीउल अव्वल में ये चराहा कर रहे हैं और ये लहक लहक के नाते पढ़ रहे हैं। नात तो बड़ी मुकद्दस चीज है यार, नात तो बड़ी मुकद्दस चीज है, तो उसको इस तरीके से स्टाइल से पढ़ना, इंसान जाहिर करता है कि मैं ये शो करूं मुझे नबी से मोहब्बत। अमेरिका में जो वीजा देने के लिए बैठा है, आप चीखो पुकारो मुझे अमेरिका से बड़ी मोहब्बत, मैं पागल हो रहा हूं और मैं खुदा की कसम वापस आऊंगा, उसको ये डर होता है स्लिप ना हो जाए, वो कहता है भाई को प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट दिखाओ ताकि पता चले तुम्हारी यहां प्रॉपर्टी है। मुझे तो वीजा इसलिए भी मिलता है, वो उनको जब मैं FRC दिखाता हूं ना, 19 बच्चे और 4 बेगमात, वो कहते ये नहीं जा सकता, ये दुनिया छोड़ देगा, पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा। ये क्या ख्याल है, ये भी एक मेरा पॉजिटिव पॉइंट है। वैसे तो वो कहते हैं पाकिस्तानियों को नस्ल घटाओ नस्ल घटाओ, लेकिन वीजे उन्हीं को देते हैं जिनकी नस्ल ज्यादा है, ये बता दूं आपको मैं। बच्चे पैदा करने का एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि आपको वीजा आसानी से मिलता है, ये याद रखना, क्योंकि वो कहते हैं दो, ये पॉजिटिव इसमें जाता है, कहते हैं एक तो रिलायबल आदमी है कि बीवी बच्चों वाला है, छड़ा छाट होता निकल लेता पतली गली से, उनको पता है कि जिसकी बीवी भी हो बच्चे भी हो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में अक्सर नहीं होते, क्रिमिनल लोग तो बीवी बच्चों की टेंशन पालते ही नहीं है। ये आपको एक गुर की बात बता रहा हूं मैं, समझ रहे हो, जो चाहते हैं ना बाहर मुल्कों में ट्रेवलिंग हो, स्पीड बढ़ा दो, आंच थोड़ी तेज कर दो, चाय सही पक नहीं रही होती, बेगम से कहे थे बेगम आंच थोड़ी तेज कर दो जल्दी पक जाएगी, तो स्पीड क्या कर दो थोड़ी सी, इससे भी एक पॉजिटिव اگرچہ وہ ترغیب یہی دیتے ہیں کہ بچے کم لیکن کم بچے والوں کو ویزا ملنا مشکل. کمارے کو تو بہت مشکل سے دیتے ہیں, ان کو پتا ہوتا بھاگے گا وہاں جا کے شادی کرے گا پھر نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر دے گا وہاں پہ. تو میرا ایک پازیٹو پوائنٹ یہ بھی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں اتنے ویزے مل رہے ہیں وہاں بھی جا رہے ہیں وہاں پہ, ویزے کو جب ایف آر سی دیکھتے ہیں نا تو وہ پھر ایک پازیٹو جاتا ہے میسج کہ ہاں بھائی ایف آر سی جب دے نا فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ ہے بھائی ایک پازیٹو جاتا ہے یار اتنے بچے آئے تھے بھاگے گا نہیں ہے واپس آئے گا. اچھا ایک نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اسی وجہ سے بھاگ رہا ہو, لیکن یہ اس لیے وہ نیگیٹو نہیں سوچتے کہ ان کو پتا ہے اس بیس پہ بھاگنا ہوتا تو بہت پہلے بھاگ چکا, 19 سے پہلے 10 پہ ہی بھاگ چکا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی, 5 پہ بھاگ جاتا, 6 ہوتا تو بھاگ جاتا, یار نہیں ہو رہا مسئلہ, 7 پہ نہیں بھاگا, 8 پہ نہیں بھاگا, 9 پہ نہیں بھاگا, 1 پہ نہیں بھاگا, 2 پہ نہیں بھاگا, سمجھ رہے ہو, 3 پہ بھی نہیں بھاگا. بھاگنا ہوتا تو بہت سے پہلی پہ بھاگ گئے نا, غلط جگہ شادی ہو گئی بھاگ گئے, وہ دوسری پہ غلط جگہ یار دو نہیں سنبھال پا رہی بھاگ گیا. تو ان کو پتا ہے یار اتنی کنٹینیو کرتا جا رہا ہے ڈھیٹ آدمی ہے تو یہ ادھر ہی سٹیبل ہو چکا ہے, اب اس کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ پازیٹو پوائنٹ جاتا ہے. خیر یہ تو پوائنٹ پوائنٹ کون کون سے پوائنٹ ہے, کبھی اکیلے میں بیٹھو تو اور بہت سارے پوائنٹ ہیں جو بتانے کے. خیر تو میں آپ سے یس کر رہا تھا کہ آپ ایمبیسی آپ کو بلائے ویزے کے, ویزا نہیں دے رہی. امریکہ میں انٹرویو میں اکثر یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہاں سلپ تو نہیں ہوگا, آپ اپنی پراپرٹی کے ڈاکومنٹ دکھا دو, ان کو اندازہ ہوتا ہے ہاں بھائی اس کے پاس اتنی پراپرٹی ہے تو کیوں بھاگے گا اتنی پراپرٹی چھوڑ کر. لوگ اس طرح کی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں. آپ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہو سیکنڈ ایئر میں تو یہ ایک بڑی پازیٹو چیز ہے, ان کو پتا ہے یار کوئی اپنی میڈیکل کالج کی تعلیم چھوڑ کے کیوں بھاگے گا, تو یقیناً اس نے واپس آنا ہے, 2 فیس ضائع تھوڑی کرے گا یہ, وغیرہ وغیرہ. اب آپ نہ میڈیکل کالج کا کوئی ان کو وہ اپنا وہ دکھا رہے ہو, بیک گراؤنڈ دکھا رہے ہو, نہ آپ اس کو پراپرٹی دکھا رہے ہو, نہ 10-15 بچے دکھا رہے ہو, نہ بیویاں دکھا رہے ہو جو ان کے ڈاکومنٹس ہیں, کچھ بھی نہیں. اب وہ امریکہ والا دوست کو لگ رہا ہے کہ بیٹا تو تو بھاگے گا, یہاں حالات بھی صحیح نہیں چل رہے, بارشوں سے بھی تباہیاں آئی ہوئی ہیں اور گٹر کے ڈھکن بھی نہیں لگ رہے, پانی بھی کراچی میں شارٹ ہے, ٹارگٹ کلنگ بھی اللہ معاف فرمائے ہو رہی ہے, غربت مہنگائی میں ڈسے ہوئے لوگ, تمہارے لیے تو امریکہ جنت ہے تو, اور تیرے پاس کوئی پراپرٹی بھی نہیں ہے, کوئی بینک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے, غریب ہے, کنفرم بھاگے گا. اب آپ ایموشنل ہو رہے ہو, ثبوت کوئی نہیں آپ کے پاس, آپ کہہ رہے ہو نہیں بھاگوں گا, خدا کی قسم یہ وطن میری مٹی, اور مٹی بھی اٹھا کے چھوپر میں لے آیا, مجھے اس وطن کی مٹی سے محبت ہے, خون کے آخری قطرے تک میری جان اس وطن پہ قربان. تو ان چیزوں سے وہ متاثر ہوگا, کہہ رہے یار یہ تو ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس یہاں رہنے کے لیے تو بھاگے گا نا. آپ کہہ خدا کی قسم نہیں بھاگوں گا, لا الہ الا اللہ, قرآن پہ ہاتھ رکھوا لو, قسم اٹھوا لو. کہہ گا بھائی صاحب ڈاکومنٹس پورے کر کے لے آ, ان جذباتی باتوں سے میں متاثر نہیں ہوں گا. اس طرح فوج میں ترقی کے کچھ اصول ہوتے ہیں, لیفٹیننٹ سے سب لیفٹیننٹ سے لیفٹیننٹ لیفٹیننٹ سے کرنل, کرنل سے وغیرہ وغیرہ. تو آپ اس کا ایک اصول ضابطہ ہوتا ہے, بھائی یہ آپ کی ایک فائل بنتی رہتی ہے, آپ وہاں بھی ایموشنل ہو رہے ہو. تو میں سر بہت ایمانداری سے مجھے آپ آرمی چیف بنا دیں, اللہ کا واسطہ آرمی چیف بنا دیں, میں بہت ایمانداری سے ملک کو چلاؤں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. بھائی یہ آپ کی ایک, یا تو بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں نا, بہت ساری چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں اس میں, وزیر اعظم سے آپ کے تعلقات بھی دیکھے جاتے ہیں, زیادہ نہیں آگے جاؤ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتے. خیر تو ہم بھی جذباتی ہو جاتے ہیں ایک دم سے, کیا کریں ایموشنل. تو ہر چیز اس میں دیکھی جاتی ہے نا, اس میں کچھ تعلقات دیکھے جاتے ہیں, کچھ آپ میں صلاحیت دیکھی جاتی ہے, سب کچھ مل جل کے ہوتا ہے. یہ میں اتنی مثالیں کیوں دے رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس اسلام ہی تختہ مشق رہ گیا ہے, تورات انجیل زبور جتنی آسمانی کتابیں ہیں, قرآن پاک سب کا ایک ہی مضمون ہے, اعمال. جنت کس پہ ملتی ہے؟ ایموشنل ہونے پہ نہیں ملتی. جنت کس پہ ملتی ہے؟ اعمال. آپ لوگ کتنے عرصے سے درس قرآن سن رہے ہیں, کئی سال ہو گئے مجھے, پہلے میں نے 30 پارہ ختم کیا, پھر اور جو میرے تفسیر کے لیکچر مفتی طارق مسعود اسپیچز والے چینل پہ جا رہے ہیں, کہیں آپ نے دیکھا کہ قرآن عقیدے اور اعمال کے علاوہ کسی اور چیز کو فوکس کرتا ہو؟ کہیں دیکھا آپ نے؟ اہل ایمان کی صفات میں وہی باتیں جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں. تبھی ہم جب قرآن پہلی دفعہ ہم نے پڑھنا شروع کیا نا عربی گرامر سیکھ کے اور جو ہمیں ترجمہ سمجھ میں آنا شروع ہوا تو ہم بار بار سوچتے تھے کہ قرآن مختلف انداز سے ایک ہی بات کو چند باتوں کو ریپیٹ کرتا ہے. باتیں وہی ہوتی ہیں لیکن انداز کیا ہوتا ہے مختلف, وہی انہی باتوں کو ریپیٹ کرتا ہے. یہ ایک اشکال ہوتا تھا. تو قرآن نے خود اس اشکال کا جواب دیا کہ ہم بار بار اپنی آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں لعلہم یذکرون, تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو. ایک دفعہ میں بات سے نصیحت حاصل نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ایمان والوں کی یہ علامتیں بیان کر دیں تو چلو ٹھیک ہے, اللہ نے بیان کر دی, یہ ہونی چاہیے مسلمانوں میں. لیکن قرآن پھر وہی علامتیں, پھر وہی علامتیں, پھر وہی علامتیں, پھر وہی علامتیں بار بار, اس لیے انسان کو احساس ہو جائے بھائی یہی ہے, اس کے بغیر اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا. اور وہ اعمال ہیں, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, وہ کیا ہیں؟ وہ اعمال ہیں آپ کے, چند اخلاقیات ہیں, وہ آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے. یعنی کچھ اندر کے اعمال ہیں, کچھ باہر کے اعمال ہیں, کچھ نظریات ہیں, عقیدے ہیں, عقیدہ توحید, ختم نبوت, رسالت, آسمانی کتابوں پہ ایمان, یہ جو چند عقیدے ہیں, ان عقیدوں میں بھی ہم نے گڑبڑ کی. اتنے پیچیدہ پیچیدہ عقیدے مارکیٹ میں لانچ کیے, بھائی اسلام تو بہت سیدھا سادہ ہے, ایک خدا پہ ایمان, اس کے سوا کسی کو نہیں پکارنا, تمام پیغمبروں پہ ایمان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا, تمام آسمانی کتابوں پہ ایمان. آخری آسمانی کتاب کون سی ہے؟ قرآن, جس نے تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا. اور موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے, یہ بہت آسان ہے. لیکن ہم نے اس میں بھی جا کے عرش کی مٹی قبر کی مٹی سے افضل ہے یا نہیں ہے, اس میں تو بھائی دونوں رائے ہو سکتی ہیں, کوئی وہ والی رائے رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے, دوسری رائے رکھ لے تو بھی ٹھیک, اس پہ تو بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ ہمارے بنیادی عقیدوں میں سے نہیں ہے. لیکن ان چیزوں پہ پھر وہ آگے حیات النبی ممات النبی کے جھگڑے, اتنے عوام تو اس میں پس کے رہ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں حیاتی جنتی, وہ کہتے ہیں مماتی دوزخی, مماتی کہتے ہیں حیاتی دوزخی, وہ کہتے ہیں مماتی. عوام جو کراچی میں تو یہی نہیں پتا حیاتی مماتی ہوتا کیا ہے. لیکن آپ دیکھو ایک حیاتی کی مسجد میں جاؤ گے, جو متشدد لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ مماتیوں کی صبح و شام, اس کا ایسا لگتا ہے زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ مماتی جہنمی ہے. حالانکہ کوئی اختلاف نہیں ہے, چند الفاظ کا تھوڑا سا کھیل ہے بس, اور اگر ہے بھی تو چپ کر جاؤ یار, چھوڑو کیا کرنا ہے اتنی ڈیپ میں جا کے باتیں بیان کرنے. عوام کو دوسری چیزوں میں لگاؤ جو قرآن نے جن چیزوں کو فوکس کیا ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, ہمارے یہاں جو فرقہ واریت کس اسٹائل کی چل رہی ہے, واقعہ تو کئی دفعہ سنا چکا ہوں لیکن موقع کی مناسبت سے دوبارہ آ جائے تو اچھا ہوتا ہے. کہتے ہیں کسی جنگل میں دو آدمی ملے, حالانکہ جنگل میں تو جانور ہوتے ہیں نا, اتفاق سے کوئی گھوم گیا ہوگا دوسرا بھی مل گیا. تو انہوں نے کہا یہ بھی ایک بندہ میری طرح کا یہاں راستہ بھول گیا ہے, کہیں دنیا میں تھے نا وہ, تو امریکہ کے فرض کرو امریکہ کے جنگلوں میں. تو اس نے دوسرے سے پوچھا یار ماشاء اللہ اور تو بھی مجھے مل گیا, تو ہے کیا؟ اب اس کو ڈر لگ رہا ہے, پتہ نہیں یہ کون سے مذہب کا ہے, کون سے کنٹری کا ہے, دشمن نہ نکلے کہیں. یار تو کدھر کا ہے؟ اس نے کہا میں پاکستان. اڑے زندہ باد, اتفاق سے میں بھی کہاں کا ہوں, پاکستان. نائس ٹو میٹ یو, بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, اپنا ملک ایک ہی نکلا. اچھا یار تو یہ بتا کہ تیرا مذہب کیا ہے؟ مسلمان ہوں. اڑے ہم بھی کیا ہیں؟ مسلمان. ویری گڈ, زبردست مذہب. اب آپ کا خوف آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے بولو, کم ہو رہا ہے کہ یار اپنا ہی ہے, ہر لحاظ سے اپنا ہے. ابھی مسلمانوں میں فرقے ویرکے بہت چل رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں, ایسا نہ ہو کوئی ایسے فرقے کا ہو کہ گردن اڑا دے یہیں میری کھڑے کھڑے کہ تجھے تو میں تلاش کر رہا تھا. اس فرقے کا بندہ جہاں ملے وہ واجب القتل ہے. اب آپ کو ایک خوف ہوا, ٹھیک ہے, آپ نے پوچھا تیرا فرقہ کون سا ہے؟ اس نے کہا بھائی سنی ہوں. اڑے یار ہم بھی کیا ہیں؟ سنی. چلو شیعہ سنی کا جھگڑا بھی ختم. اچھا سنیوں میں تو چار مکاتب فکر ہیں, وہ تو سب ایک دوسرے کو برحق سمجھتے ہیں, لیکن چلو انسان کو اپنے ہم مسلک سے تھوڑا سا لگاؤ زیادہ ہوتا ہے. اس نے کہا میں فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں. اڑے یار ہم بھی فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, سبحان اللہ. کوئی جھینگے پہ بھی جھگڑا, کوئی کیکڑے پہ بھی جھگڑا نہیں ہوگا, کوئی خوراک کوئی مسئلہ ہی نہیں, نماز بھی بالکل سیم ہوگی, آپ کو اور خوشی محسوس ہوئی. अच्छा यार तू ये बता कि हनफियों में देवबंदी भी होते हैं बरेलवी भी होते हैं, तू क्या है? उसने मैं देवबंदी हूँ। अबे जिंदाबाद यार, कोई रबीउल अव्वल पे भी कोई मसला नहीं होगा, सेम रबीउल अव्वल दोनों का है भाई, सेम। तो हम सब का वो इमाम हरम के पीछे हम दोनों नमाज पढ़ लेंगे, कभी जाना होगा हज पे, ठीक है, कोई मसला ही नहीं होगा, जबरदस्त। देवबंदियों में हयाती है ममाती है? उसने कह दिया ममाती, धत तेरे की, इधर आके मार खा गया साला, मुझे पता था तू पंचपीरी है। तो फिर उसको जो मुनाजरे जंगल में वही क्या शुरू हो गए, तभी तो लोग मजहबी लोगों से ना भागते हैं, भागते हैं कि यार इस दलदल में जितना घुसोगे ना। इसलिए मेरे भाई, इसलिए अहले इल्म इसे नहीं कहते कि आपको जो आता है वो अवाम के सामने रख दें, ना 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 ना, अवाम के सामने वो रखें जो इनकी बुनियादी जरूरत है। बड़ा मसला अहले इल्म के साथ क्या होता है, जो जिनको इल्म में रुसूख नहीं है। कुरान ने अहले इल्म की दो किस्में की हैं, कुरान ने, एक अहले इल्म जो अहले इल्म है, एक वो वर्रासिखून फिल इल्म है, जिनको इल्म में क्या है रुसूख, बहुत मजबूत गिरफ्त है। सिर्फ किताबें याद कर लेना और अहदीस का पता होना, ये सही है ये ज़ईफ है, ये मुतवातिर है ये खबर वाहिद है ये कुरान की है, ये इसको इल्म नहीं कहते सिर्फ, महाज इसको इल्म रुसूख, डेप में जाना, इस्लाम के मिजाज को समझना, ये बहुत जरूरी है। मैं अक्सर एक हदीस पेश करता हूं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, नबी के नाल मुबारक, आपका जो जूता है नाल मुबारक, वो लेके जा रहे हैं, रास्ते में हजरत उमर से मुलाकात हुई, तो हजरत अबू हुरैरा ने हदीस सुनाई कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहे वो जन्नत में दाखिल होगा। मैंने नबी से ये सुना है और मेरे पास इसका सबूत भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने में ये था कि भाई ये अलामत होगी कि देखो नबी ने अपनी एक नाल मुबारक दी हुई है ये बताने के लिए कि ये मेरी तरफ ही निस्बत है और ये ऑथेंटिक हदीस है। हजरत उमर ने हजरत अबू हुरैरा को ऐसे करके धक्का दिया पीछे, वो बेचारे कूले के बल जमीन पे गिरे। फखरर तो आलस्ती, और वापस हजरत उमर ने फरमाया वापस, हजरत उमर बड़े जलाली थे ना, जलाली। अच्छा हमारे दौर में ऐसा होता तो फौरन नबी की हदीस के गुस्ताख का शायद फतवा लग जाता कि वो नबी की हदीस सुना रहे हैं और ये इनको क्या कर रहे हैं धक्का। हजरत उमर से पूछा जाए तो वो कहेंगे जैसे कि पूछा गया, नबी ने पूछा उमर तुमने इनको मेरी हदीस पेश कर रहे तुमने इनको धक्का क्यों दिया? तो हजरत अबू हुरैरा रोते हुए नबी के पास गए, या रसूल अल्लाह मैंने उमर को हदीस सुनाई, उन्होंने मुझे ऐसे करके धक्का दिया। तो नबी ने उमर से पूछा रजी अल्लाह अनु, ए उमर तुमने ऐसा क्यों किया? फरमाया या रसूल अल्लाह इज़ा यत्तकीलु नास कमा काल, फरमाए लोग तो इस हदीस को सुन के इसी पे एतमाद कर लेंगे, लोगों के सामने हदीस का ये टुकड़ा आएगा बस कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है जन्नत में जाएगा, तो लोग कहेंगे अच्छा भाई बुरे अमाल भी करते रहो, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो और कहां चले जाओ जन्नत में। क्या मतलब? अबू हुरैरा ये जब ये बात पब्लिकली बताएंगे तो ये लोगों की मेंटेलिटी से ऊपर की होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को मलामत नहीं की। यहां एक इश्काल होता है, फिर नबी ने क्यों बताई हजरत अबू हुरैरा को? क्या माज अल्लाह हजरत उमर का की तफक्को सैयदुल अंबिया से ज्यादा थी क्या भाई? नबी ने ये इश्काल तो फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी होता है ना कि नबी ने क्यों बता दी। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम इल्म की इशात है, तभी तो हजरत अबू हुरैरा ने बाद में यह हदीस बता दी ना सबके सबको, क्योंकि नबी की तो जिम्मेदारी है जो बात है वो लोगों के सामने रखी जाए। और हजरत उमर ने यह देखा कि एज इट इज जब यह लोगों के सामने जाएगी तो लोग इसका सही मतलब नहीं लेंगे, तभी नबी से दुनिया के जाने के बाद हजरत अबू हुरैरा ने यह हदीस फिर बताई लोगों को ताकि इल्म का कितमान ना हो, यानी इल्म ना छुपे। क्योंकि उस वक्त दूसरी हदीसें हैं जिनमें आमाल की वैल्यू है, वो हदीसें भी उम्मत के सामने आ गई थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह काम इसलिए किया, इसमें हिकमत थी, सही हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की तफक्को और बसीरत को बयान करना। बात काम नबी के दौर में ऐसे हुए हैं कि उसमें किसी और सहाबी की फजीलत को बयान करने के लिए, इसकी मिसाल ऐसे है جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ عورتوں کو پردے کا حکم دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے پہ عمل نہیں کیا، لیکن آسمان سے آیتیں نازل ہو گئیں کہ آپ عورتوں کو پردے کا حکم دیں۔ کئی سارے احکام ایسے ہیں جو حضرت عمر نے بتائے اور وہ قرآن کا حکم بن کے نازل ہو گئی، نبی نے نہیں کیے وہ شروع میں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کا ایک بڑا مقصد سیدنا عمر کی فضیلت بیان کرنا بھی تھا، کیونکہ نبی کے بعد ابو بکر اور عمر نے ہی اس جگہ کو سنبھالنا تھا، نبی کی جانشینی ادا کرنی تھی، تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کو فالو کرو۔ تو اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ خیر، موضوع سمیٹ رہا ہوں، تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، یہ بات یہاں سے آئی کیسے کہ یہ علم کا لیول ہوتا ہے ہر شخص۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ دیکھو اب وہ جو جنگل میں ملے تو وہ بالکل ہی ان کا آخری پہ حیاتی مماتی پہ آ کے ان کا جنگل میں پھڈا شروع۔ ہمارے استاذ نے ایک واقعہ سنایا کہ کئی سال پرانا واقعہ ہے کہ ایک کے پی کے سے خاتون حج پہ گئی، اس کا بچہ گم گیا، وہ بوڑھی خاتون تھی عمرے میں نا، عمرہ یا حج پہ اس کا بچہ گم گیا۔ تو کسی نے بچہ تلاش کر کے، کسی مولوی صاحب نے بچہ تلاش کیا، بہت بیچاری رو رہی تھی، بچہ لا کے اس خاتون کو دے دیا، وہ بڑی خوش ہوئی، ماشاءاللہ بیٹا، اللہ جزائے خیر دے۔ تو اس خاتون نے، کے پی کے میں کسی ایسے علاقے سے تھی جہاں یہ حیات النبی ممات النبی کا پٹا بڑا چل رہا تھا، تو اس سے پوچھا کہ تم حیاتی ہو مماتی ہو؟ اس نے کہہ دیا میں پنچ پی رہی ہوں۔ کہتے ہیں اتنا غصے ہوئی ہے نا بھائی، یعنی اس کو افسوس ہو رہا تھا کہ یہ کاش کسی حیاتی نے تلاش کیا ہوتا، یعنی پنچپیری نہ ہوتا جس نے یہ۔ ہمارے استاد کہہ رہے ہیں مہران ہے، تو اپنے بچے کو لے، تیرے بچہ کسی نے لا کے دے دیا، اس کا شکریہ ادا کر، تجھے اس سے کیا لینا دینا کہ وہ پنچپیری ہے یا حیاتی ہے، کیا لینا دینا۔ تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ ہاں، میں یہ بات کر رہا تھا کہ علم کی ہر بات عوام کو کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی۔ لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں نا، مفتی صاحب کے پاس کوئی علمی صلاحیت نہیں ہے، ہلکا پھلکا بیان کر رہے ہوتے ہیں، لطیفے چٹکلے اور شادیوں وادیوں کی باتیں۔ بھائی، علمی بیانات مدرسوں میں ہوتے ہیں، طلبہ کے سامنے ہوتے ہیں، عوام کے سامنے، کیونکہ قرآن بہت آسان ہے، جنت میں جانے کے لیے بیسک اصول بہت آسان ہے، تو ان کو ہی فوکس کیا جائے گا۔ علمی بکراتیوں میں، افلاطونیوں میں اور بہت پیچیدہ اور ٹیکنیکل قسم کے چیزوں میں لوگوں کو الجھانا، اس سے آپ کی دھاک تو بیٹھ جائے گی، لوگ بولیں گے یار ویل ایجوکیٹڈ آدمی معلوم ہوتا ہے، انگلش منگلش بھی، عربی شربی کی اصطلاحات بھی، اور یہ ٹھیش پیش۔ آج کل یہی اسکالر کر رہے ہیں، جن کو انگلش آتی ہے تو ٹھیش پیش لگا دیں گے، کچھ سینٹینس گھسڑ دیے، لوگ کہتے ہیں بڑا پڑھا لکھا ہے، ابے بھائی فضول بات کر رہا ہے، نہ سر نہ پاؤں، باتوں سے باتیں نکلتی ہیں، کیا کروں۔ یوٹیوب پہ یہ بہت ہو رہا ہے آج کل، پہلے قبل حکیم صاحب آیا کرتے تھے، انگلش منگلش آتی تھی حکیموں کو، اچھے حکیم ہوتے تھے، ماہر، اردو میں بات کر رہے ہوتے تھے، جگر کو جگر کہہ رہے ہوتے تھے، گردے کو گردہ کہہ رہے ہوتے تھے، لیکن ہوتے بڑے ماہر حکیم تھے، ان کی بڑی تحقیق ہوتی تھی۔ اب اس طرح کی گاڑی اردو کوئی بولے گا تو لوگ سمجھتے ہیں یہ حکیم کو انگلش تو آتی نہیں ہے، تو ایسے ہی پاگل ہوگا۔ اب حکیموں کا بھی ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے، اب جو دو نمبر حکیم ہیں کیا کرتے ہیں، ایک آدھ چکر ان کا یورپ امریکہ کا لگ چکا ہوتا ہے، ایک آدھ مہینہ وہاں کے بھی کسی ادارے میں کچھ آرگینک چیزیں انہوں نے پڑھ لی ہوتی ہیں، پھر وہ آتے ہیں، پھر وہ انگلش مارتے ہیں، پھر ٹی وی چینل میں، ایک تو تھری پیس سوٹ ٹائی میں آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ ایجوکیٹڈ امریکہ سے حکیم بن کے آیا، یہ وہاں بھی ہوتا ہے نا، یا امریکہ کینیڈا وغیرہ میں بھی ایسے ادارے ہیں جو آرگینک یا خوراکوں پہ تحقیقات کرتے ہیں، تو چھ چھ مہینے کے شارٹ کورسز کیے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں آتا ان کو، لیکن لوگوں میں ایک امریکہ سے، بھائی آنین کے بارے میں کہاں سے، پیاز نہیں بولے گا جو سارے پاکستانیوں کو سمجھ میں آ رہا ہے پیاز کا مطلب، یہ بولے گا آنین، جو صرف ڈیفنس کلفٹن میں اور چند، پھر غریب آدمی اس کا ترجمہ دیکھ رہا ہوگا آنین ہے کیا، لیکن انسپائر بہت، متاثر بہت ہو رہا ہوگا، یار آنین، لہسن نہیں، ادرک نہیں، وہ گئے لہسن ادرک ہری مرچیں، حالانکہ وہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے آسانی سے، کالی مرچ لہسن ادرک ہر، اور خواتین کے جو چینل ہے اس میں تو لہسن ادرک ہے ہی نہیں، اس میں تو اور انگلش ٹھش پھش، ایسا آدمی کہتا ہے بے یہ ہے لہسن، یہ اس کو بولا ہے لہسن گارلک، اور وہ بھی ٹھیک ہے، وہ اس کے میں خلاف نہیں ہوں، ابے میجورٹی تو اردو جانتی ہے نا، جب میجورٹی انگلش پہ آ جائے گی تو آپ بھی بول لینا، میجورٹی کو تو وہی زبان میں بات کرو جو اس کی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اس سے بھرم نہیں آئیں گے، تو لہذا ٹھش پھش، تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، अब मैं तो यूट्यूब देखता हूँ ना, हेल्थ चैनल तो मैं बहुत शौक से देखता हूँ, तो आके ना इसलिए मुझे यूट्यूब पे पता चल जाता है ये एक नंबर हकीम है या दो नंबर है, ये एक नंबर डॉक्टर है या दो नंबर है, डॉक्टरों का भी पता चल जाता है। तो इतना सुन के, और बड़े बड़े डॉक्टरों से ताल्लुकात भी हैं तो पता चल जाता है, उनको भी वीडियोस भेज के मैं करवाता हूँ, पूछता हूँ कि क्या फेंक तो नहीं रहा, तो बात बता रहे होते लंबी फेंकी है, बात कह रहे होते अमेरिका के जो अभी एक नई रिसर्च आई है बिल्कुल जदीद तहकीक है, और डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे होते हैं। मैं वो डॉक्यूमेंट अमेरिका में डॉक्टरों को भेजता हूँ, कह रहे हैं यार इस किस्म की कोई तहकीक ये पता नहीं कहां से इसने छपवाया है और छपा के डाल दिया है, हमें क्या पता चल रहा होता है कि यार ये ऑथेंटिक है भी या नहीं, हमें पता चल रहा होता, हम तो इंग्लिश में इंग्लिश देख रहे होते हैं, कोई एक ठप्पा लगा हुआ होता है कहीं से, इधर से किसी मोची से लेकर ठप्पा लगा दिया, क्या पता चल रहा होता है यार। तो इसलिए यूट्यूब की कोई भी तहकीक होती है रिलायबल डॉक्टरों से पूछें, समझते हो। खैर तो अब उसमें क्या होता है, वो किबला हकीम साहब थ्री पीस सूट टाई में आने लगे हैं, और अब वो थोड़ा सा इंग्लिश विंग्लिश भी बोलने लगे हैं, तो उस इंग्लिश की वजह से लोग कहते हैं पढ़े लिखे हकीम है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, तो कोई बाकी पढ़ा लिखा हो, बूढ़ा हो, एजड हो, तजर्बा हो, वो उसको इन भ्रम से मुतासर ना हुआ करो, कहां से कहां बात चलेगी। खैर मैं जल्दी से बात को समेटता हूं, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि लोगों की मेंटेलिटी के हिसाब से उनसे बात करनी चाहिए। मैं जब तलबा को दरस कुरान की ट्रेनिंग दिया करता था, कई साल मैंने जामत रशीद में तलबा को दरस की ट्रेनिंग दी है, तो अपने सामने बुला के उनसे तकरीर करवाना, अपने सामने बिठा के उनको दरस कुरान दिलवाना, ये मेरी जिम्मेदारी थी। तो जब भी मैं दर्स दिलवाता था ना, तो मैं फिर नोट कर रहा होता था ये दर्स के दौरान क्या क्या गलतियां करते हैं। अच्छा हमारे यहाँ ये भी एक मसला है, बगैर सीखे मिंबर पे आके बैठ जाते हैं, फिर वही मुनाफरत फैलाना और ये सब चीजें चल रही होती हैं। तो उसमें मैं दो चीजें बहुत नोट कर रहा था, एक मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल ना करो दर्स में, नंबर दो दर्स में आपने ये नहीं देखना कि मुझे क्या आता है, दर्स देने से पहले आपको बहुत कुछ आता है जिससे आपकी इल्मी धाक बैठ सकती है, बहुत कुछ आता है, आपने ये देखना है सामने वालों की जरूरत क्या है, सामने वालों की बोलो जरूरत क्या है, आता तो बहुत कुछ है आपको भाई, लेकिन सामने वालों की वो जरूरत नहीं है, उनको उस इल्म की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं यहां किसी मुतनाज़े शख्सियत के बारे में बयान करना शुरू कर दूं कि कुछ कह रहे हैं वो अच्छे थे, मैं कह रहा हूं वो बुरे थे, दलाइल के अंबार लगा दूं, अब उस शख्सियत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना कबर में हमसे उसके बारे में सवाल होगा, ना दुनिया में उसका कोई असर पड़ रहा है हमारे ऊपर, तो इससे ये तो पता चल जाएगा मुफ्ती साहब का मुताला बहुत है, लेकिन एक भरम बैठ जाएंगे, अवाम को कोई फायदा नहीं होगा इससे। अब देखो एक डॉक्टर ने लोगों को जमा किया, हार्ट स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उसने पब्लिक को जमा किया, आओ मैं आपको हेल्थ के बारे में इंतहाई अहम मालूमात देने वाला हूं, बल्कि हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, किसी ऐसी बीमारी का स्पेशलिस्ट है जो लाखों में कोई एक आध लोगों को होती है, ऐसी बीमारियां भी हैं जो हजारों लाखों में एक आध लोगों को होती है। अब उसने बुला के वो पूरे लेक्चर देना शुरू कर दिए, डायग्राम बना के, ऐसी होती है बीमारी इतनी खतरनाक, और उस बीमारी का एक पेशेंट भी मजमे में मौजूद नहीं है। तो पता है वो बीमारी तो लोगों को उससे फायदा हो ना हो, उस बीमारी के बारे में बहस मुबहसे की खारिश की बीमारी बहरहाल पैदा हो जाएगी, नहीं आई मेरा ख्याल है बात। अब पता है उससे क्या होगा, जब डॉक्टरों की वही बातें सुनेंगे जिनका हमारी रोजमर्रा की लाइफ से ताल्लुक ही नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो यूट्यूब पे कहीं सुनेंगे दूसरा डॉक्टर इसके खिलाफ नजरिया लेकर आया, आपने सुना होगा ये वाला डॉक्टर तो वो वाली बात कर रहा था और ये उसके खिलाफ, तो फिर आप दलाइल मुनाजरे बहस, फिर हर एक से अबे फला डॉक्टर की इस बारी बीमारी के बारे में ये राय है, तेरी क्या राय है, वो कहेगा मेरी ये राय, अबे तू गलत बोल रहा है, वो सही बोल रहा था, एक गैर जरूरी जंग में वो तमाम के तमाम लोग छिड़ जाएंगे, हालांकि उस बीमारी का इस सोसाइटी से कोई ताल्लुक है ही नहीं। मर्दों को बिठा के जनाना बीमारियों पर डिस्कशन शुरू कर दे कोई, अब सारे मर्दों को बुलाया और मेंसेस के बारे में डिटेल, मर्द बोलेंगे भाई हाँ ये हमारा मसला थोड़ी है, है भाई उनको ट्रेन कर रहे हैं, तो भाई ये डॉक्टरों में ये बात करो, क्योंकि उनको कभी ख्वातीन का इलाज करना पड़ता है, कभी मर्दों का इलाज, तो उनको बताओ, मर्द को आप ये क्यों बता रहे हो। मैं अगर हैज़ और निफास के मसाइल मर्दों को सिखाऊं, या तो शादीशुदा मर्दों को ताकि वो अपनी बीवियों को सिखाएं, तो समझ में आता है, एवं ही मैं मर्दों को समझाना शुरू कर दूं, बोलेंगे यार हमको हमारे साथ ये मसला थोड़ी है, प्रेगनेंसी के बाद आपने अपनी फिटनेस को कैसे कायम रखना है, बच्चा पैदा होने के बाद जो है ना दोबारा वेट अपनी असल हालत पे आ जाए, इस पर मैं लेक्चर पे लेक्चर तो आदमियों में लेक्चर दे रहा हूं। तो शुरू में तो आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन फिर पता है क्या है, आपको मोटापे की बीमारी लगे ना लगे, इस मसले पर बहस की बीमारी बाहर लग जाएगी, फिर आप दूसरे डॉक्टरों को जाके छेड़ेंगे, बताया यार खवातीन की अगर बच्चा पैदा हो जाए तो दोबारा वापस वेट कैसे मेंटेन होता है, वो बताया ऐसे, अबे चल तेरे को क्या पता, उसने पूरी रिसर्च से बात की इस तरह से होता है, फिर वो कहेगा नहीं इस तरह नहीं, वो डॉक्टर ऐसा है उसको क्या पता, अबे तेरे को तेरे को पता है, उसको ज्यादा पता है, नहीं मुझको ज्यादा पता है, ले आ मेरे सामने चैलेंज, फिर तीसरा डॉक्टर अलग, फिर दो फिरके एक महल्ले में बन जाएंगे, हालांकि उनका इस मसले से कोई ताल्लुक होगा ही नहीं। गंजे को आप बता रहे हो ये वाली कंघी ज्यादा मुनासिब है बाल बनाने के लिए, ब्रश से बाल बनाने के बजाय इस कंघी से बनाया कर बाल। तो गंजे को बाल बने ना बने, ये बीमारी बहस की, ये खारिश की बीमारी लग जाएगी। हमारे कराची में एक मौलवी साहब थे, उनके मेंबर पे जब भी जाओ ना वो हयात ममात का मसला बहुत, उनका हर महीने हर हफ्ते का मसला ही यही था। मैं उस वक्त दर्जे खामिसा में पांचवें साल में पढ़ता था, तो मुझे याद है हमारा एक तालिबिल, देखो मेरा वही अकीदा है जो जमहूर का अकीदा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक में बरज़खी हयात के साथ जिंदा है, कब्र मुबारक में बरज़खी हयात के साथ जिंदा है। तो क्योंकि मुझ पर भी लोग फतवे लगाना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या हुआ, तो वो हर हफ्ते यही मसला, हर हफ्ते जुम्मे में यही मसला। तो एक तालिबे में इजाजत मांग रहा था कि हजरत वो बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े थे वो, बहुत बड़े आलिम है, मेरे उस्ताद के पास आया कि बहुत बड़े आलिम है, बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनके बयान में चले जाया करूं, हमारे उस्ताद इजाजत नहीं दे रहे थे, बोले नहीं जाओ। तो मैंने कहा हजरत उनके अकीदे में हमारे अकीदे में कोई फर्क तो है नहीं, और हैं भी नेक और इल्म है, तो आप इनको क्यों नहीं जाने दे रहे, या तो होता ना कोई ऐसी बात कर रहे होते जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ। तो हमारे उस्ताद ने कहा असल में खारिश की बीमारी लगेगी इसको, अभी एक तालबिल में इसकी सीखने की उम्र है, तो ये जो वहां बार बार एक ही टॉपिक है, वो शादियों वाला टॉपिक नहीं था, कोई और टॉपिक था, शादियों वाला तो टॉपिक इसलिए है ना कि वो तो हम सबका मसला है, वो तो हम सबका, मेरा नहीं है, अब आप सबका मसला है वो, तो वो तो हर जगह की जरूरत है ना, हर घर की जरूरत है वो तो इसलिए मैं बोलता हूं, हर मुसलमान की ख्वाहिश है ये, हर मुसलमान, अब तो वीजा भी मैंने बताया कि लगेगा, तो वही यही मसला वो बयान करते थे, हयात ममात, हयात उन्नबी ममात उन्नबी, हया हर वक्त। तो उन्होंने कहा यार ऐसी खारिश लग जाएगी ना तुम्हें कि जिंदगी भर पर किसी और काम के नहीं रहोगे, तो इसलिए उन्होंने रोक दिया, उस तालिबे को बचा लिया, आज वो बहुत सारे दीन के अच्छे काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं दीन की, वरना लगता तो बस सारी जिंदगी इसी में खपा देता। तो खैर हम बात अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं, तो मैं ये कर रहा था, देखो हमारी जरूरत की जो बुनियादी चीजें हैं, अच्छा एक तो मैंने मिसाल दी आपको कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल होनी चाहिए, आपकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग से या इमोशनल होने से वीजा देने वाले की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको गवर्नमेंट जॉब में तरक्की चाहिए तो आपकी चीखों पुकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अल्लाह भी जन्नत में, जो अल्लाह ने जन्नत की अलामतें बयान की हैं, जब तक वो अलामतें नहीं पाए जाएंगी, हमारे उछलने कूदने से, कलाबाजियां खाने से, चीखों पुकार से, हाय हुए करने से, मैं स्टीकर लगा रहा हूं कि मैं नबी का आशिक, और इन सब चीजों की से ज्यादा जो अहम चीज है वो क्या है, आमाल जो अल्लाह ने कुरान में बयान किए हैं, जो इस सूरत में भी बयान किए हैं, तो उसके बगैर नहीं हो सकता मेरे भाई, आप जो मर्जी कर लो। एक और बात जहन में आई थी, वो निकल गई इसी मिसाल के तहत। खैर अब हो क्या रहा है, हम ये कर रहे हैं कि उन कवायफ को तो हम पूरा कर नहीं रहे जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, जो इस्लाम की असल तालीमात हैं, और अल्लाह से जन्नत किसी और तरीके से जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा नहीं हो सकता। तो कुरान जो बेसिक अलामतें बयान करता है ना अहले ईमान की, उन अलामतों में सबसे पहले तौहीद है, वो तो मैंने बता दिया, उसमें तो कंप्रोमाइज नहीं है। ये जो हयात ममात की बात आई है ये बताने के लिए कि बेसिक अकीदे आपके मजबूत होने चाहिए। अकीदा अगर आपका खराब है, आप उल्टे लटक के नमाज पढ़ो, आप रो रो के पागल हो जाओ, आप कुछ भी कर लो। मिसाल के तौर पर देखो, यानी शरीयत के खिलाफ तरीके से आप अल्लाह को राजी नहीं कर सकते, अल्लाह नहीं मुतासिर होगा मेरे और आपके अमल से। आप फजर की हम लोग कितनी रकतें पढ़ते हैं? दो रकतें पढ़ते हैं, दो सुन्नत दो फर्ज। अगर हम ऐसा करना शुरू करते हैं, दो फर्ज में इमाम साहब एक रकत और मिला लें। अब आज की मगरिब की नमाज में मैंने सद्दा सहव किया, क्यों किया? अत्तहियात के बाद मैंने दुरूद शरीफ पढ़ लिया था, मैं दो रकत के बाद भूल गया कि ये तीसरी रकत है या दूसरी। अब मैं भूल गया ना, तो मैं अत्तहियात पढ़ी, फिर मैंने दुरूद शरीफ। अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि अगर कुछ देर हो जाएगी तो पीछे से कोई सुभान अल्लाह बोलेगा, भाई ये दो रकतें खड़े होकर बोल ही नहीं रहे होते लोग पीछे से। इमाम जब दो रकत के बाद खड़े होना और बैठ जाए ना, और काफी देर बैठा रहे, तो समझ जाओगे भूल गया ये। सलाम फेरने के बाद बताते हैं, फिर लोग सलाम फेर देते हैं, फिर लोग कहते हैं खैरियत, तो उससे तो उनकी नमाज छूट जाती है ना। अभी मौका है, अभी सद्दा साहब से तलाफी हो जाएगी। तो मैं फिर बैठा, मैं इंतजार कर रहा हूं, दुरूद भी पढ़ रहा हूं, और कि यार पीछे से कोई आवाज आएगी, अगर नहीं आई तो इसका मतलब सही ट्रैक पे चल रहा हूं मैं। तो दुरूद शरीफ भी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूं, और दुआ भी आहिस्ता आहिस्ता, कोई पीछे से बोले, हल्की सी मुनहनी सी आवाज आई सुभान अल्लाह, ऐसे बिल्कुल हल्की सी, ऐसा लग रहा था वो भी कंफ्यूज थे। तो मुझे तो हल्का सा इशारा चाहिए, मैं समझ गया कि यार मुझसे गलती हुई है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आखिर में सद्दा साहब किया, ठीक है ना। अब आप मुझसे पूछते मुफ्ती साहब सद्दा साहब क्यों किया आपने, मैं कहूं यार अत्तहियात के बाद मैंने दुरूद शरीफ पढ़ लिया था। तो मुफ्ती साहब आपको माज़ अल्लाह दुरूद पाक से इतनी माज़ अल्लाह नकले कुफर नफरत के दुरूद पढ़ने पर सजा दे रहे हो अपने आप को सद्दा साहब करके। सद्दा साहब एक तरह की पनिशमेंट ही है ना, एक तरह की पनिशमेंट है कि आपने जो गलती की अब आप उसकी तलाफी करें, दो सजदे ऐड करें आप। मुफ्ती साहब आप नबी पे दुरूदो सलाम आपने पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, इतना प्यारा कलाम, सईदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम, सईदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, और आप पे दुरूद सलाम के नजराने पेश किए जा रहे हैं, और पीछे से वो कमबख्त बोल रहा है सुभान अल्लाह, यानी गलती हुई है आपसे, वो दुरूद पे आपको टोक रहा है दुरूद पढ़ने पर, और आप भी उसके टोकने पर सद्दा साहब करके ये बता रहे हैं पब्लिक को कि आज मुझसे गलती हुई है। जब इमाम सद्दा साहब करता है पब्लिक समझ जाती है इमाम से क्या हुई है गलती। तो मुफ्ती साहब आज आपसे गलती हुई है, क्या गलती? मैं कहूं भाई दुरूद शरीफ पढ़ लिया था। तभी तो लोग कहते हैं ये वहाबड़े जन्नत में नहीं जाएंगे, ये वहाबड़े, इनको तो दुरूद से नफरत माज अल्लाह। वो भी वहाबड़ा जिसने हल्का सा सुभान अल्लाह कहा, तो शायद इसी फतवे के डर से उसने हल्का सा बोला कि पता नहीं चले किसने बोला है, वो भी जहन्नमी और ये भी जहन्नमी। दुरूद पढ़ रहे हैं भाई, दुरूद पढ़ने पर इनको सद्दा साहब हो रहा है, तो ये दलील बनेगी? हम क्या कहेंगे भाई, देखो अल्लाह के बंदो माज़ अल्लाह कोई मुसलमान दुरूद को गलती नहीं कह सकता, जितना पढ़ो कम है दुरूद। लेकिन अल्लाह ने जो जन्नतियों की अलामत बयान की है और हुक्म दिया है अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल, और नबी ने फरमाया, अल्लाह ने कहा रसूल की इताअत करो, और नबी ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मैंने नमाज पढ़ी है वैसे नमाज पढ़ो। नबी मगरिब की दो रकतों के बाद सिर्फ अत्तहियात पढ़ते थे और खड़े हो जाया करते थे। आपको नबी की इताअत करनी है, अपने जज्बात को नबी की इताअत पे गालिब करने की कोशिश ना करें आप। अगर जानकर दुरूद पढ़ लिया तो सद्दा साहब भी नहीं, नमाज वाजिबुल अदा होगी, अब तो नमाज ही लौटानी पड़ेगी, क्योंकि सद्दा साहब तो गलती से जो गलती हो जाए। जानकर पढ़ोगे नमाज वाजिबुल अदा, भूले से पढ़ोगे तो सद्दा साहब करना पड़ेगा। यह है शरीयत का मिजाज जो आज हम लोग की इस खोपड़ी में नहीं आ रहा। हम चाह रहे हैं जज्बात के जरिए अल्लाह को हम राजी करें, इमोशनल हो जाएं हम, तो भाई दुनिया में आपकी इन चीजों का किसी पे, अच्छा मियां बीवी का रिश्ता, बेगम से आपकी शादी के बाद बेगम कह रही अंडे लेकर आओ दही लेकर आओ, आप इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं उसको, और आप बड़े इमोशनल हो रहे हैं, बेगम क्या मैं अंडे लेने के लिए जाऊंगा तो मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारी जियारत से महरूम होना पड़ेगा, मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है, मैं नहीं चाहता कि यहां बेड से उठ के मैं कहीं जाऊं, वहीं पड़ा हुआ सो रहा है, वहीं उठ रहा है, बस वॉशरूम में जाता है, फिर आके वहीं बैठ जाता। पता नहीं मुझे क्या उन्हें लगता है, बेगम जब मैं घर से बाहर निकलता हूं मुझे तुम्हारी याद आती है, मैं नहीं जाऊंगा। अपने भाई से बोलो वो अंडे लेकर आए, भाई दही लेकर आओ, खाना बनना है। बेगम दही लेने के लिए मुझे घर की चौखट से बाहर निकलना पड़ेगा, जब से तुम इस घर की दहलीज पे तुम्हारे कदम, वो उर्दू मुझे गाड़ी आती है रफंजा, पता नहीं क्या क्या लोग, वो एक मौली साहब बयान कर रहे थे, मैंने ये मंजर देखा तो उंगुश्ते बदंदा रह गया मैं, वो तकरीर कर रहे थे अवाम में बयान। वैसे तो इसका मतलब आसान है, उंगलियां नहीं हम हैरानगी से दांतों में दबा देते, तो ये हैरानगी से किनाया है। मैंने कहा यार इतने गाढ़े गाढ़े अल्फाज आजकल मार्केट में चलते नहीं है, ये बोलते मैं हैरान हो गया, काफी है। पंजाबी में हिरियान हो गया, उर्दू में हैरान हो गया, बस इतना काफी है, उंगुश्ते बदंदा हो गया। एक आदमी हकीम साहब के पास गए, कहने लगे, वो उर्दू अदब के बड़े कोई स्कॉलर थे, तो उन्होंने कहा कि हकीम साहब खुतूतान मैदा में कुछ हालात खाना जंगी सी हो रही है। हकीम साहब ने कहा यार बहुत सारे मुल्कों में जंग का मैंने सुना है, अभी कोई नई जंग छिड़ गई है किसी मुल्क में? बहुत सारे मुल्कों में जंग हो रही है, अभी इंडिया पाकिस्तान की रिसेंटली हुई है, तो अभी कौन सा? वो कह रहा भाई खुतूतान मैदा में हालात खाना जंगी सी हो रही है। वकीम की समझ में ही ना आए, फिर वो बार बार पेट की तरफ इशारा, कमबख्त ये बोलना पेट में दर्द हो रहा है, ये बोल सीधा सीधा। तो आपने बेगम को बड़े बड़े खूबसूरत अल्खाब, अंडे में लेने जा सकता हूं, कमाओ तो सही, मैं कैसे कमाऊं? कमाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा तुम्हें छोड़ के, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तो और फिर रोना शुरू कर दिया आपने। वो मान लेगी आपके इस नाटक को? बोलो, बोलेगी नाटक किसी और के सामने करना, ये नाटक दो चार दिन से ज्यादा चलता नहीं है। यार हम इंसान एक दूसरे को, जब तक हमारा एक बनाया हुआ क्राइटेरिया है उस पर कोई ना उतरता हो, हम नहीं मानते, अल्लाह कैसे मान लेगा? हैं? अल्लाह हमारे जज्बात से कैसे मुतासिर हो जाएगा? फजर की दो रकतों के बजाय मैं तीन रकतें पढ़ना शुरू कर दूं, आप बोले यार मुस्ताद साहब ये क्या कर रहे हो यार, एक रकत बढ़ा ही रहा हूं ना, दो सरदे कर दी, एक रुकू कर दिया, तेरे को क्या तकलीफ है? भाई हमें तकलीफ नहीं है, नमाज आपकी नहीं हुई है, क्योंकि पैगंबर ने फजर में दो सुन्नतें और दो फर्ज, इतना फुकहाए किराम ने नबी की इताअत को फॉलो किया है कि सुबह सादिक के बाद फजर की दो सुन्नतों के अलावा कोई और नमाज पढ़ना भी मकरूह ना पसंदीदा। क्यों? कहते हैं भाई नबी ने तहज्जुद की नमाज के बाद जब सुबह सादिक होती थी आप फजर की दो सुन्नतों के अलावा कोई और नमाज नहीं पढ़ते थे, हालांकि मना भी नहीं किया। अब अगर आप तहज्जुद के बाद सुबह सादिक हो गई, अब आप कह रहे हो फजर की दो सुन्नतें तो मैंने पढ़ ली हैं, चलो दो रकत और अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ लूं, वक्त तो है अभी फजर की नमाज में, किसी भी मुफ्ती से पूछो कहेगा जायज नहीं है। आप कहोगे नाजायज होने की क्या दलील है, नबी ने कब मना किया कि जिसने दो सुन्नतें जरा जल्दी पढ़ ली हो तो मजीद दो नफिल नहीं पढ़ सकता, अब दिखाओ कोई हदीस जिसमें नबी ने मना किया हो, कोई हदीस नहीं दिखा सकते। कहेंगे भाई नबी से ज्यादा आगे क्यों जा रहा है, नबी से ज्यादा नमाजों की हिर्स किसी में भी नहीं थी, कुर्रत आईनी फिस सला, नबी ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। जब आपने सिर्फ दो रकतें और वो भी मुख्तसर पढ़ी है हल्की, तभी फजर की दो सुन्नतें, हल्की पढ़ना सुन्नत है, कुलिया यू हल काफिरून पढ़े पहली रकत में, दूसरी में कुलू अल्लाह, लंबी पढ़ना सुन्नत नहीं है। क्यों? आगे फजर लंबी पढ़े, फिर आप फजर की दो फर्ज लंबी पढ़े आप। अब आप कह रहे हो नहीं मैं दो नहीं, मैं तो चार पढ़ूंगा, मैं तो आठ पढ़ूंगा, मैं तो दस पढ़ूंगा। भाई तू क्यों अपनी तरफ से शरीयत ला रहा है? कह रहा मैं नमाज, मुझे नमाज में मजा आता है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, और मुझे क्यों रोक रहे हो नमाज से? फिर कुरान की आयतें फिट करना शुरू कर दे। अरअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला, कुरान में आता है कि नबी आपने उस बदबख्त को देखा कि जब कोई नमाज पढ़ता है तो वो बदबख्त उसको रोकता है, ऐसे बदबख्त भी है दुनिया में कि आप नमाज पढ़ रहे हो तो वो आपको रोके। तो आपने कहा वो बदबख्त तू ही है असल में, अबू जहल की औलाद है तू, क्योंकि अबू जहल भी ये काम करता था अबू लहब, कुरान ने उसकी बुराई बयान की है कि भला ऐसे बदबख्त को देखा कि एक आदमी अल्लाह की इबादत कर रहा है और वो इबादत से रोकता है, तो तू भी मुझे इबादत से रोकता है, बता दो रकत जो मैं पढ़ रहा था नमाज है या नहीं? कहा है। और नबी ने कहीं इस नमाज से रोका? नहीं भाई, कहीं भी नहीं रोका नबी ने, कहीं भी नहीं मिलती हमें हदीस के नबी ने फजर की दो सुन्नतों के बाद फर्ज से पहले दो रकतों से रोका हो नबी ने। तो इसका मतलब वो जो कुरान में आयते हैं ना, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, रेफरेंस दे रहा हूं, आजकल रेफरेंस के भरम बहुत हैं, रेफरेंस दे दो तो बस जो मर्जी, हलाल को हराम और हराम को हलाल कर लो। लोग इस रेफरेंसी से मुतासिर होते हैं, भाई उस रेफरेंस में जाके देखो इसका सियाको सबाक क्या है, ये किस मौके पे नाजिल हुई है, इसका तर्जमा क्या है, इसका मफहूम क्या है। ना मफहूम नहीं देखते तो फौरन फतवा लगा दिया कि ये तो नमाज से रोक रहा है, वो जहन्नमी तू ही है, तू किससे रोक रहा है, नमाज से। तो हम कहेंगे भाई नमाज से वो रोक, दो तरह का रोकना होता है, एक रोकना वो कि किसी को अल्लाह की इबादत से ही छेड़ो और वो आपको नमाज से रोक रहा हो, और एक ये है कि नमाज से इसलिए नहीं रोक रहे कि उसको नमाज से नफरत है, वो कहता है नमाज पढ़ो लेकिन सुन्नत के मुताबिक, जिस तरह नबी ने पढ़ी है। मकरूह वक्त में नबी ने नमाज पढ़ने से मना किया, नहीं कर सकते सरदार। तो इस पूरी बहस से मैं क्या बताना चाहता हूं भाई, ये सब बातें जनरल नॉलेज के लिए नहीं है, ये बताने के लिए कि इस्लाम हमारे जज्बातीपन से मुतासिर बोलो नहीं होता। इस्लाम में अलहम से लेके वन्नास तक अल्लाह ने हमें दो तरह के अहकाम दिए, एक अकीदा सही कर लो, अकीदा तौहीद, मुशरिक की कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। अब जो मुशरिकीन है वो कहते हैं अल्लाह ऐसा माज अल्लाह जालिम क्यों है कि तौहीद परस आदमी थोड़ी सी नेकी करे उसको अजर मिलेगा, और जो मुशरिक है वो इतने सारी दीन की खिदमत, वो इंसानियत की खिदमत करे कोई अजर नहीं है, तो ये क्या है भाई। अल्लाह जालिम जब होता है जब अल्लाह ने आपके पास तौहीद का ऑप्शन ना रखा होता, अल्लाह कहता है शिर्क छोड़ दो तो आज तुम्हारी सारी नेकियां कबूल, तो शिर्क तो आपने जबरदस्ती इख्तियार किया हुआ है ना। तो लोग हम पे दबाव डालते हैं कि मुशरिक को भी जन्नती, भाई ये जन्नत हमने नहीं बनाई, जहन्नम हमने नहीं बनाई, हमारा काम है अल्लाह की बातें लोगों तक पहुंचा देना। अल्लाह कह रहे मैंने मुशरिक पर जन्नत को हराम कर दिया है, जब अल्लाह कह रहे तो जन्नत बनाई किसने, अल्लाह ने बनाई है। तो पहली चीज अकीदा, नंबर दो आमाल। फिर आमाल में दो किस्म के आमाल हैं, एक जिस्मानी आमाल और एक दिल के आमाल, अखलाकियात जिन्हें अखलाक। देखो इस्लाम में अखलाक का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों से अच्छे तरीके से बात करें। आज किसी ने मुझसे पूछा, अभी की बात है, बयान शुरू होने से थोड़ी देर पहले अमेरिका से हमारे एक रिलेटिव का फोन आया, उन्होंने कहा भाई मैंने तफसीर पढ़ी, मैं तो बहुत परेशान हो गया वो तफसीर पढ़ के। मैंने कहा क्या परेशानी, कहते हैं वो तो कुरान में आता है आबसा वतावल्ला अंजा अहुल आमा, हमारे नबी के बारे में आयतें नाजिल हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम नाबीना साहबी थे, वो नबी की खिदमत में आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि सरदारों में बयान कर रहे थे, वो सरदार लोग आते नहीं थे काबू में, तो वो सारे सरदार बैठे हुए थे, इसी दौरान एक नाबीना साहबी आ गए, नबी से बात करने लगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को नागवारी गुजरी और आपके चेहरे पर सलवटें आई, क्यों आपको अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम का ये अमल नामुनासिब लगा कि इतने बड़े सरदार बैठे हुए हैं, ये तो अपने ही है भाई, इनको तो कभी भी बात कर सकता हूं मैं, ये इतने सरदार लोग बड़े बड़े लोग बैठे हुए अरब के, ये तो बात ही नहीं सुनते, तो इस दौरान अब्दुल्ला बिन मक्तूम क्यों आ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इश्काल हुआ, तो उसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे लकीरें आई, सलवटें आई, और आपने अपने चेहरे मुबारक को ऐसे करके नाराजी से फेर लिया। तो कुरान में नबी को तंबीह की गई कि ना 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 ना, ये जो अरब के सरदार लोग हैं ना, ये आपकी बात सुनना नहीं चाहते, इनको हिदायत हासिल करने का शौक नहीं है, और अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम गरीब भी है नाबीना भी, लेकिन भागते हुए दौड़ते हुए आ रहे हैं। तो ठीक है, ये सरदार लोगों पर मेहनत करने से इस्लाम को फायदा तो होगा, क्योंकि सरदार ईमान ले आए तो सब ईमान ले आते हैं, तो इनमें वजह तरजीह ये है कि ये सरदार हैं, इनके ईमान लाने से पूरी कौम ईमान लाने का इम्कान बढ़ जाएगा, और अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम सरदार नहीं है। लेकिन एक दूसरी चीज है, इनमें तलब नहीं है, और उनमें क्या है, वो सीखना चाहते हैं या सीखना चाहते नहीं है। तो जो सीखना चाहता है उसको पहले फोकस किया जाएगा, जो सीखना नहीं चाहता उसको दूसरे नंबर पर रखा जाएगा। देखो एक शख्स मेरे पास आता है और वो मसला पूछना चाहता है, मुफ्ती साहब मुझे एक मसला पूछना है कि नमाज में ये गलती हो जाए तो नमाज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। उसको मैं नहीं बता रहा और उसको बता रहा हूं जो पूछ ही नहीं रहा, उसकी नॉलेज को मैं इंप्रूव कर रहा हूं जबकि वो चाहता ही नहीं है, जबकि वो सीखना ही नहीं चाहता। यह इतवार का बयान है, लोग आ रहे हैं बयान सुनने के लिए आ रहे हैं, यहां बैठे हुए और मैं आपके सामने बयान नहीं कर रहा, मैं चला गया उन पकड़ पकड़ के बाहर लोगों को तबलीग कर रहा हूं, इधर आ यार बात सुन भाई, अपने अखलाक दुरुस्त कर ले। वो कह रहे यार मैं सुनना ही नहीं चाहता, क्यों नहीं यार तू सुनना नहीं चाहता लेकिन मैं चाहता हूं तू सीधे रास्ते पे आ जाए। तो आप लोग को आप परेशान हो गए ना, आप बोलोगे यार हम आए हैं सुनने के लिए इतनी दूर दूर से, मुफ्ती साहब इधर हमें सुना नहीं रहे हैं, और जो सुनना नहीं चाहता आप उसको सुना रहे हैं, तो नबी के पेशे नजर तो हिकमत ये थी कि ठीक है ये सुनना नहीं चाहते, लेकिन ये सीधे रास्ते पे आ गए तो पूरा मक्का हिदायत पे आ जाएगा। लेकिन अल्लाह ने कहा ठीक है ये भी एक तरजीह है, इस बेस पे भी तरजीह दी जा सकती है, लेकिन अल्लाह की नजर में तलबगार को बेतलबों पे तरजीह दी जाएगी। जिसके दिल में तलब है, जो सीखना चाहता है उसको पहले नंबर पे रखें, और जो सीखना नहीं चाहता उसको उसके बाद रखें। यह तंबीह की अल्लाह ताला ने। अब अल्लाह चूंकि अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह कर रहा है ना, तो मुखातब के सीगे इस्तेमाल नहीं कर रहा, ए नबी आपने ऐसा किया, ए नबी आपने, ना ना ना, अल्लाह ने गाइब के सीगे इस्तेमाल किए, थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे इंग्लिश में होता है ना भाई, हम जब ग्रामर पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन, आजकल शायद इस्लाह चेंज हो गई हो, ही सिंगुलर के लिए जो गायब हो, थर्ड पर्सन का मतलब जो गायब हो, और जो मुखातब हो हाजिर हो उसके लिए यू का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो अब खिताब तो नबी से हो रहा है, लेकिन अल्लाह ने डायरेक्ट नबी को खिताब करके यू नहीं कहा कि ए नबी आपकी पेशानी पे बल आए, ना ना ना, अल्लाह ने फरमाया उनकी पेशानी पे बल आ गए और उन्होंने अपना चेहरा एक नाबीना से फेर दिया। तो अल्लाह तंबीह भी कर रहे हैं लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं, क्योंकि महबूब को ऐसे ही तंबीह की जाती है। अब वो मुझे कहने लगे, जो हमारे रिलेटिव जिन्होंने अमेरिका से भी थोड़ी देर बयान से पहले उन्हीं का फोन था, कहने लगे भाई एक तफसीर में लिखा हुआ है ये तो गलत है, ये नबी के बारे में नहीं है, कुरान की ये आयतें बिल्कुल नबी के बारे में नहीं है, ये तो फला माज अल्लाह फला काफिर के बारे में है, क्योंकि नबी के बारे में तो कुरान कहता है इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, ए नबी आपके अखलाक सबसे ऊपर। तो जब नबी के अखलाक ऊपर है तो नबी के चेहरे पे बल कैसे आ सकते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से अपना चेहरा फेर कैसे सकते हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई ये अखलाक के मुनाफी नहीं है ये चीज, जो बहुत बा अखलाक होते हैं उनको भी कभी गुस्सा भी आ सकता है, किसी बात पे उनको नागवारी भी हो सकती है, आपके नजर में अखलाक की डेफिनेशन ही गलत है, तो इसकी बेस पे तफसीरी पूरी चेंज कर दी। भाई ये क्या बात हुई यार, ये तो सारे मुफस्सरीन हदीस से ये साबित है ये नबी से नबी मुराद है इससे। तो इन्नका लअला खुलुकिन अजीम का मतलब ये नहीं है कि आप कभी गजबनाक नहीं हो सकते, आप कभी किसी से चेहरा नहीं फेर सकते, ये अखलाक का तो हमारा बनाया हुआ तसव्वुर है। हमारे नबी तो मैदान जंग में तलवार लेके भी निकले कि नहीं निकले, है भाई आप तो मैदान जंग में तलवार लेके भी निकले, लड़ाई की है आपने मैदान जंग में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरी हुदूद भी नाफिज की हैं, आप गजबनाक भी हुए हैं, आपके चेहरे अनवर गुस्से से सुर्ख हो जाया करता था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गजब आता। साहबी कहते हैं ऐसा लगता जैसे अनार के दाने न छोड़ दिए गए हों। किसी ने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज किया ना कि आपने माज अल्लाह एक खारजी था, उसने कहा आपने जो है वो अदल नहीं किया इस दफा माले गनीमत में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गजबनाक, और आपने फरमाया अगर पैगंबर अदल नहीं करे तो कौन अदल करेगा बताओ, यानी एक तरफ मुझे पैगंबर भी कह रहे हो। तो इसलिए अखलाक अपने दुरुस्त करने का जो कुरान जिस अखलाक को फोकस कर रहा है वो अखलाक जो इस्लाम ने सिखाए हैं, उसमें गुस्से के वक्त गुस्सा, मुस्कुराहट के वक्त मुस्कुराहट। नबी ने फरमाया ना बच्चा जब 7 साल का हो जाए नमाज का हुक्म दो, 10 साल में भी ना पढ़े तो क्या मुस्कुराओ, ना ना फिर उस पर सख्ती करो। तो ऐसे मौके पे बाप का डांटना चीखना चिल्लाना, कोई देख ले बोले लो भाई मुफ्ती तारिक मसूद को तो हम समझते थे बड़े बा अखलाक और हर वक्त अखलाक पे रिपोर्टें पेश कर रहे होते हैं और लतीफे सुना सुना के हंसा रहे होते हैं, आज तो देखो अरे तेरी ऐसी की चंगेज खान बने हुए, ये तो ये कैसे अखलाक है चीख रहे हैं। भाई उस वक्त ना चीखना क्या है, जब अल्लाह की हुदूद की पामाली की जा रही हो, तोड़े जा रहे हैं अल्लाह के हुदूद को। हाँ ये नहीं कि बिला वजह के हर वक्त चंगेज खान बना रहे, हदीस में आता है नबी जब घर में दाखिल होते थे मुस्कुराते चेहरे के साथ। आज कुछ लोग घर में दाखिल बाहर गटर के ढक्कन पे बैठ के लड़कों लौंडे लपाड़ों के साथ हा ये हंस रहे हैं, घर में दाखिल होते ही बच्चे सहमना शुरू, बेगम भी परेशान क्योंकि उसको ऐसा लगता है चंगेज खान ने बगदाद पे दोबारा अटैक कर दिया। तो ये गलत है, लेकिन कभी कभार जब आपको पता है कि एक चीज गलत हो रही है और मेरे सख्ती करने से वो ठीक हो सकती है, तो ऐसे मौके पे सख्ती करना गुस्सा करना ये बद अखलाकी नहीं है बल्कि क्या है अखलाक। बाद लोग गैरत लेस होते हैं, उनको गुस्सा ही नहीं आ रहा होता किसी बात पे। जल्दी से बात को समेटता हूं, अखलाक अपने दुरुस्त करना یہ باطنی عمل ہے. اخلاقیات میں کیا ہے؟ حسد نہ ہو. اب اس کو تو لوگ اخلاق سمجھتے ہی نہیں ہیں, کسی اور کی ترقی کو دیکھ کے آپ جل رہے ہو, کڑ رہے ہو, ٹینشن میں آ رہے ہو, یہ کیا ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب آپ کے اخلاق اچھے بولو نہیں ہے. ابھی آپ ٹھیک نہیں ہوئے ہو, ابھی آپ ٹھیک نہیں ہوا. دیکھنے میں آپ نماز پڑھ رہے ہوگے, تہجد پڑھ رہے ہوگے, اللہ کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہوگے, عمرے کر رہے ہوگے, بڑا بانور چہرہ ہوگا آپ کی, خوبصورت داڑھی ہوگی, بغیر کریم کے ایسا لگ رہا ہوگا کریمیں لگائی ہوئی آپ نے, اور خوشبوئیں میں گھوم رہے ہوگے, ہر نائس ٹو میٹ یو, اور بڑے اچھے اخلاق سے بات کر رہے ہوگے, لیکن جمشید کے پاس نئی گاڑی دیکھ کر آپ کے پسینے چھوٹ رہے ہیں, یہ کمبخت میرے ساتھ میٹرک کیا ہوا, نمبر بھی اس دل میں گالیاں, اس بغیرت کے نمبر بھی مجھ سے کم تھے, اور آج گاڑی لے کے گھوم رہا ہے اور ہم اپنی پرانی پٹ پٹی میں. تو یہ اخلاق ہیں, یہ کس, یہ دل کی حالت کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اس کا مطلب آپ با اخلاق, با اخلاق اندر سے ہوتا ہے بھائی. نبی نے فرمایا نا, الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلو, جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا جس کو دل کہا جاتا ہے, وہ ٹھیک ہو تو جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک, وہ خراب تو آگے سارے اعمال برباد. کیونکہ انسان کو جس سے حسد ہو تو پھر آدمی بلا وجہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے, اس کی جائز تعریف بھی برداشت نہیں ہوتی. سیاسی لیڈروں میں یہی تو ہوتا ہے, کبھی آپ نے دیکھا کوئی سیاسی لیڈر جو اپوزیشن آپ کا, آپ حکومت میں ہو کوئی دوسرا اپوزیشن میں ہے, آپ کسی سیاسی لیڈر کی جائز تعریف کسی دوسرے کے سامنے کر کے دکھا تو دو جو جائز تعریف ہو. نا نا نا, ویسی اس نے یہ 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 بیوقوف بنانے کے لیے کر رہا تھا. وہ آپ کو جب کسی سے بوجھ ہو جاتا ہے نا تو اس کے ہر اچھے کام میں کیڑے نکالے جاتے ہیں. ابھی یہ کیا بتاؤں یار, میرے پاس ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے تو حکومت کے چند پالیسیوں کے بارے میں نا, تو میں نے کہا یہ والی پالیسی بہت اچھی ہے, باقی تو میں حکومت سے بہت ساری چیزوں میں اختلاف کرتا ہوں, یہ کام خاندانی ہو رہا ہے. اور پھر میں نے اس کے ثبوت پیش کیے, میں نے کہا دیکھو یہ ہو گیا یہ ہو گیا, کہتے ہیں اصل میں یہ کام تو کیے لیکن یہ صرف حکومت نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کیے. میں نے کہا یار اللہ کے بندے ہو, اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے, حالانکہ مجھ سے بڑا کوئی تنقید کرنے والا شاید کبھی خوشبو لگا کے آئے نا, تو جو تنقیدی کام ہے ممبر پہ بیان کرنے کے نہیں ہوتے, نجی محفلوں میں تو آدمی سب کچھ بولتا ہے. تو میں نے کہا یہ والا کام ٹائٹ کر دیا, کہہ رہے نہیں اصل میں یہ کام ٹائٹ کیا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہم اچھے ہیں. میں نے کہا یار یہی اگر تمہارا لیڈر کر رہا ہوتا تو یہ تاویل کرتے کہ بیوقوف بنانے کے لیے؟ اپنے والے کے بارے میں جتنی باتیں وہ سب اخلاص پر مبنی تھیں, دل کی عطا گہرائیوں سے اس نے قوم کی خدمت کی. اور مخالف پارٹی میں کوئی اچھا کام ہے تو پبلک کو, یا تو واضح قرائن ہو تو سب ٹھیک ہے مان لیں گے. تو یہ ہر جگہ ہی چل رہا ہے میرے بھائی. وہ ایک میں اکثر واقعہ سناتا ہوں, ایک خاتون سے ایک پڑوسن ملنے کے لیے آئی, بہن تمہاری بیٹی کی شادی ہوئی ہے, داماد کیسا ملا تمہیں؟ یہ چل رہا ہے سیاسی لیڈروں میں آج کل, بالکل یہ صحیح عکاسی کی ہے سوسائٹی کی. بیٹا تمہیں باجی یا بہن تمہیں داماد کیسا ملا؟ اتنا اچھا داماد ہے بہن, کیا بتاؤں میری بیٹی 12 بجے تک پڑی ہوئی سوتی رہتی ہے, کچھ بھی نہیں کہتا اس کو. اب تو کراچی میں سب ہی 12 بجے تک الحمدللہ, اب لطیفہ ہی کینسل ہو گیا. اب کراچی والے کہیں گے تو صحیح ہے نا, 12 بجے صبح صبح اڑی جاتی ہے, لوگ تو 2 بجے کراچی میں اٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں. ہمارے ایک دوست کو میں نے فون کیا دوپہر 2 بجے, میں نے کہا آ جاؤ جانا, کہہ رہا میں بھی ناشتہ کر رہا ہوں. میں نے کہا جلدی نہیں ہو گیا کچھ اتنی جلدی ناشتہ؟ ڈاکٹر کی صحت کے خلاف ہے بھائی, تھوڑا لیٹ کرنا چاہیے ناشتہ. تو 12 بجے تک میری بیٹی سو کے اٹھتی ہے, میرا داماد اس کو کچھ بھی, بالکل اس کی مرضی کی لائف دی ہوئی ہے اس میں. اچھا بہن تمہیں بہو بھی ملی ہے, سنا ہے اسی دن تمہارے بیٹے کی بھی شادی تھی, بہو کیسی ہے؟ کمبخت 12 بجے سے پہلے اٹھتی نہیں ہے سو کے, منوس 12 بجے تک پڑی رہتی ہے, اور میرا بیٹا بھی جورو کا غلام بن چکا ہے, اسی کے چرنوں میں بیٹھا رہتا ہے. میں کہتا ہوں اس کو اٹھا, یہ 12 بج گئے. آپ اس کو لطیفہ سمجھ رہے ہو لیکن ہم سب کی زندگیاں اسی اصول پہ گزرتی ہیں, سمجھتے ہو؟ جس سے دشمنی اس کی ہر اچھائی بری, جس سے دوستی اس کی ہر برائی اچھی. تو یہ खराबी बाहर की नहीं है, ये असल में टेक्निकल फॉल्ट कहां का है? गाड़ी में आवाज आ रही होती है ना, आप कोई बेवकूफ आवाज को बंद करने की कोशिश करें तो ऐसे अलार्म, आप घड़ी का अलार्म बज रहा हो और आप अलार्म के ऊपर बैठ जाओ, अलार्म बंद होगा है? तकिया रख दो बंद होगा भाई, उसका बटन ऑफ करना पड़ेगा, जहां से बज रहा है वहां से ठीक करो उसको। तो ऐसे ही मेरे भाई, ये जो बुराइयां हो रही है ना, वो वाला उसकी हर अच्छाई भी बुरी और उसकी हर बुराई भी, अपने वाले की हर बुराई भी अच्छी, ये अंदर का टेक्निकल फॉल्ट है। अब गाड़ी बज रही है तो मैकेनिक क्या कहता है, भाई आवाज आ कहां से रही है? अब मैकेनिक ने कहा बज रही है तो आप क्या करो, बजाए उसकी आवाज है ना, आवाज वो आपके कानों में उसने वो लगा दिया, अब नहीं बज रही, चेक करें, क्या कहते हैं, एयरपोर्ट कहते हैं उसको मेरा ख्याल है। मैं जब सोता हूं ना, आप अजीब मेरे सोने का मंजर है, मेरे साथ दोस्त बहुत हैरान होते हैं, मैं दो पंखे चलाता हूं सोने से पहले। कनाडा से मैं एक मशीन लेकर आया, होता ये था कि कनाडा वगैरह तो सर्द ममालिक हैं, जापान भी ठंडा मुल्क है, पंखे नहीं चल रहे होते। अब पंखे ना चलने से होता ये है कि हम जब सो रहे हैं तो आवाज आ रही है, अब मेरे साथ दोस्त सो रहा है उसके खराटे ले रहा है, अब मैं अगर मेजबान से बोलूं मुझे अलग कमरा लेके दो, उनका खर्चा बिला वजह का डबल, दो बंदे हैं तो यार एक उधर सोएगा एक इधर सोएगा, इस बेड पे सोएगा, वो खराटे ले रहा है, इतनी बड़ी टेंशन मेरे लिए सफरों में, कोई खराटे ले रहा है, कोई देर से सो रहा है, उसको नींद नहीं आ रही। जापान में जिनके घर में ठहरा था उनको मैंने कहा होटल छोड़ो यार, आपके घर में ये कमरा दे दो, अब मैं वहां आया तो उनके बच्चों की आवाज, तो मुझे नींद ही नहीं आ रही, मेरे मसाइल खड़े हो गए, उसका एक टेक्निकल हल निकाला मैंने। फिर हम सफर में इकट्ठे गए, हमारे कुछ दोस्त थे केपी के वगैरह दो चार साल पहले, तो हमारे एक पठान दोस्त है, मेरे बड़े जिगरी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे हल बताया। मैंने कहा क्या हल है? उन्होंने कहा कि YouTube पे पंखा चलाने की वीडियो लगा दो। मैं जहां जाता था ना तेज पंखा चलाता था, सर्दी है तो कंबल लेके सो जाता था, पंखे की आवाज में बहुत सारी आवाजें दब जाती हैं, तो मैंने कहा यहां तो पंखा भी नहीं है। उन्होंने कहा यूट्यूब पे पंखा चलाओ। YouTube पे मैं गया तो बहुत सारे पंखों की आवाजें, बिल्कुल वही आवाज होती है जो हमारे पंखे की। मैंने कहा यार दिमाग तो ये कहेगा कि ये ओरिजिनल नहीं है पंखा, मुझे पंखे में अच्छी नींद आती है, कुछ लोगों को पंखे के साउंड से मोहब्बत होती है, उनमें मैं भी हूं, रंग चल रहा होता है ना बड़ा मजा आता है यार, और पंखा जितना पुराना हो ना उतनी अच्छी नींद आती है, क्योंकि रंग ऐसे चल रहा होता। एक जगह तो मैं गांव में बैठा हुआ था, उन्होंने एक पेडिस्टल फैन ला के रखा, मुझे लग रहा था इनकी नानी की जहेज का है ये, किसी को क्या पता किसकी बात हो रही है, हिम्मत नहीं हुआ, पुराना सब पंखा ना, मैं उसके नीचे, मुझे लगा कि ये गिर जाएगा, वो पेडिस्टल फैन नहीं होते डंडे वाले, अब वो यूं रंग हिल भी रहा है। मैंने कहा भाई ये गिरेगा? वो कह रहे नहीं गिरेगा, ये हमारी बहुत पुराना है। मैंने कहा ये बता रहा है कि मैं गिरने वाला हूं, और आप हैरान हो गए, गिर गया तो शुक्र है मैं नीचे करीब में लेटा हुआ नहीं था, मैं अभी बात कर रहा हूं और वो गिर गया। तो लेकिन वो अड़ंग अड़ंग के अपना एक बिल्कुल, अगर खामोशी हो ना नींद नहीं आती इंसान को उसमें, मेरी है, हर आदमी का अपना अपना उसूल होता है। ट्रेन में कितनी अच्छी नींद आती है, ठकाठक ठकाठक ठक, उसी को आदमी आदी हो जाता है ना ठकाठक सुन के। जहाज में कितना शोर होता है लेकिन लोग सो रहे होते हैं, शोर अगर कंटिन्यूसली एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ हो ना तो वो लोरी बन जाता है, वो फिर शोर नहीं रहता। हाँ एकदम से कोई छींक रहा है आ करके, और कोई नाक साफ कर रहा है, कोई खराट, फिर नहीं नींद आती इंसान को। तो जो मेरे दोस्त थे खराटे वाले, उनको भी मैं कहता था कंटिन्यूसली अगर एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ आप खराटे लो ना तो मैं सो जाऊंगा। लेकिन तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है यार, थोड़ी देर के बाद चेंज, कभी नाक से आवाज निकाल रहे हो वो अलग फ्रीक्वेंसी के साथ एकदम गले में आ जाओगे, अंदर जाने की फ्रीक्वेंसी अलग है, बाहर निकालने की अलग है, तो ये नहीं होता भाई, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक फ्रीक्वेंसी के साथ अगर कंटिन्यूसली खराटे लो फिर चुप नहीं होना, फिर चुप होकर दोबारा खराटे मारोगे फिर नींद खराब होगी, लेकिन वो इस पे अमल नहीं करते। इसलिए तो इसका बेहतरीन हल मैंने सोचा, तो मुझे हमारे दोस्त ने बोला यार पंखा यूट्यूब पे लगा लो, यूट्यूब पे ना बारिशों की आवाजें भी हैं, पंखे की आवाजें भी हैं, बहुत सारी आवाजें, जो पसंद हो वो लगा के सो जाओ आप। तो वो मुझे बड़ी जबरदस्त चीज मिल गई, तो मैं यूट्यूब पे जोर से पंखा लगा के ना पंखे की आवाज, उसमें होता ही शुरू में तो आदमी को लगता है फेक है, थोड़ी देर में आदमी भूल जाता है और वो यही समझता है कि ये पंखा ही चल रहा है। वो मुझे बड़ी जबरदस्त चीज हाथ में आ गई। तो अब मैं जब कनाडा गया, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब यहां तो बाकायदा ऐसी मशीनें मिलती हैं पंखे की आवाजों की, क्योंकि मोबाइल में तो कभी चल रहा है फिर मोबाइल की बैटरी, तो उन्होंने मुझे मशीनें दी। मैंने कहा मुझे 5 मशीनें चाहिए, क्योंकि चारों घरों में एक एक रखूंगा और एक अपने साथ कभी सफर में। तो 5 मशीनें उन्होंने मेरे लिए अरेंज की, तो अब वो मैं घर में लगाता हूं। वो लगाया स्विच और पंखा जोर से चलना शुरू। पंखे की आवाज चेंज करना चाहते हैं तो उसमें ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं बारिश की आवाज लगाएं, तेज बारिश हो रही है वो लगा दें आप। उसका फायदा क्या होता है, इतनी लंबी मैंने आपको कथा सुना दी, एक तो इसलिए कि अगर किसी को ये मसला मेरी तरह है तो वही इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते। उससे फायदा ये होता है बच्चों के शो। आज क्या हुआ, आज मैं जो रात को मैं नहीं सोया, ना फजर के बाद भी बहुत कम सोया, आज मैंने बयान करना था, मैं जाग जाग के मेरी खोपड़ी बिल्कुल आउट, और मैंने कहा मुझे लाजमी 1.5 से 2 घंटे की नींद चाहिए, वरना मैं बयान नहीं कर पाऊंगा, ना हो जाएगा बयान का। तो अब मैं जब घर गया हूं तो हमारे रिलेटिव आए हुए थे कुछ बच्चों के शोर शराबे, तो मैंने कहा यार ये तो नींद का मसला खराब, तो मैंने अपना कमरा बंद करके 2 पंखे चलाए, मशीन वाला भी मोबाइल वाला भी, मशीन वाला भी फुल आवाज में और मोबाइल वाला भी, मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कर दिए। फिर वो अपने कान 2 इतने पावरफुल पंखे चले। शुरू में थोड़ी तकलीफ होती है, क्या शोर हो रहा है, शुरू में होती है थोड़ी, नया आदमी कहेगा अबे क्या शोर शराबा लगाया हुआ है भाई, होती है, लेकिन 5-10 मिनट के बाद आदमी उस शोर शराबे को भूल जाता है। तो ऐसा 1.5 घंटा गहरी नींद सोया हूं, उठा तो पंखे दोनों फुल स्पीड से चल रहे थे। समझते हो कि नहीं समझते। तो ये तो खैर आपके लिए एक पैकेज मैंने बताया कि शोर शराबे में इस पैकेज को इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा, उससे शोर खत्म नहीं हो जाएगा। शोर खत्म करने के लिए जहां से शोर शुरू है ना, वहां जाके खत्म करना पड़ेगा। इस शोर में, इस नए शोर में पुराना शोर दब जाएगा। तो ये तो नींद के लिए टोटका है, लेकिन ये असल शोर का इलाज नहीं है, ये बेख्वाबी का तो इलाज है। शोर के इलाज के लिए मेरे भाई जो बच्चे चीख रहे हैं उनकी ट्यूनिंग और सर्विस करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो हसद की बेस पे जो बुराइयां इंसान कर रहा होता है वो बुराइयां पंखे चलाने से ठीक नहीं होती। उसके लिए हसद को खत्म करना पड़ेगा, जेलिसी को खत्म करना पड़ेगा। जैसे गाड़ी में अगर शोर आ रहा है, आप मैकेनिक के पास गए, यार मेरी मैं जब चलाता हूं शोर शराबे की आवाज आती है, उसने मेरे पंखे वाली मशीन लगा दी आपकी गाड़ी में कि ये चला लिया करो, दोनों पंखे चलाओ, मशीन वाला भी और मोबाइल वाला भी। आपने कहा ये चलाने से क्या होगा, मोबाइल की एलईडी में लगा दी उसने, ये फुल स्पीड में चलाया करो, उससे क्या होगा, आपको शोर की आवाज तंग कर रही है ना, वो आवाज नहीं आएगी आपको। तो वहां ये लॉजिक चलेगी, बोलो बोलोगे भाई आवाज जो आ रही है ना गाड़ी में, तो इससे ये जो पंखे चला के मैं गाड़ी में सो तो जाऊंगा लेकिन गाड़ी का तो बेड़ा गरक हो जाएगा ना, तो गाड़ी का फॉल्ट पकड़ भाई, तू कहां से आवाज आ रही है, ये आवाज कहां से आ रही है। तो ऐसे ही मेरे भाई जेलिसी की बेस पे जो इंसान बुराइयां कर रहा होता है उसके लिए जरूरी है कि अंदर के ट्यूनिंग सर्विस की जाए, हसद को खत्म करने की कोशिश की जाए। वो कैसे खत्म होती है, पैगंबरों ने बताया भाई, सबसे पहले तकदीर पर ईमान, जो मुकद्दर में है वो होके रहेगा, जिसकी किस्मत में लैंड क्रूजर थी वो मिलके रहेगी, जिसकी किस्मत में चिंची है वो चिंची ही पे रहेगा। अल्लाह के खजानों से आप जबरदस्ती कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, अपने आप को टेंशन देने के अलावा कुछ भी नहीं, तो अल्लाह की तकदीर पे राजी रहो। नंबर 2, दुनिया मुसाफिर खाना है, लैंड क्रूजर वाला भी कुछ दिन में कब्र में कीड़े खा रहे होंगे, रक्षे वाले की भी कब्र में कुछ दिन में कीड़े खा रहे होंगे, खत्म। तो क्या ऐसी चीज के पीछे भागना जो आरजी है, क्या ख्याल है, अब मैं फिरौन से जलना शुरू कर दूं, फिरौन को इतनी बड़ी हुकूमत मिली थी मुझे क्यों नहीं मिली, भाई वो मर गया खत्म, क्या फायदा। तो आज के जो फिरौन है वो भी मर जाएंगे, तो सब खत्म। तो चंद चीजें, वो तो एक अलग टॉपिक है, हसद का इलाज कैसे होता है। बताने का मकसद ये कि अंदर के इंसान को जब तक मैं और आप ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक हम जन्नत में नहीं जा सकते। देखो कोई किसी को हसद की इलाज की कोशिश कर रहा है फिर भी हसद खत्म नहीं हो रहा, लेकिन वो जिससे हसद हो रही है ना, उस हसद हो रहा है उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, सब्र करता है तो भी जन्नत में चला जाएगा वो। बाज दफा ये होता है कि आपको अपने किसी दोस्त की कामयाबी का सुन के जलने लगे आप, लेकिन आपको एहसास हो गया कि यार ये गलत हो रहा है, मुझे जलना नहीं चाहिए, एहसास हो गया और आपने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो भी ये अल्लाह की रहमत है कि जो चीज इख्तियार में ना होना अल्लाह उस पर गुनाह नहीं देता, सजा नहीं देता। तो आप कयामत के दिन अल्लाह आपसे ये नहीं कहेगा तू जला क्यों, आपको कहेगा अल्लाह जला तो था लेकिन मैं इस जलने पे निदामत थी, मुझे खुद बू आ रही थी अपने अंदर से जलने की, दूसरे को भूख आए ना आए मुझे खुद आ रही थी। तो अगर आपको अपनी बुराई का एहसास भी हो गया तो अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है, अल्लाह उस पर भी बख्श देगा, चल भाई तुझे एहसास तो था ना। तो इसलिए उलमा ने लिखा है कि हसद अगर किसी से पैदा हो रहा है लेकिन आप उसके तकाजे पे अमल नहीं कर रहे, आप अपने आप को ब्रेक लगा के रखते हो, तो इस पे अजर मिलता है उल्टा, कि आपने मुजाहिदा किया नफ्स के खिलाफ, क्योंकि जो आपके बस में था वो आपने कर लिया, और जो अब जब ऐसा करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हसद ही खत्म हो जाएगा। तो अखलाक को दुरुस्त करना जरूरी है, तो अखलाक में मुस्कुरा के बात करना भी है, दिल भी है, दिल में दुनिया की मोहब्बत ना हो, दुनिया को मुसाफिर खाना समझे, तकब्बुर ना हो, खुद पसंदी ना हो। खुद पसंदी क्या होती है, अब बताओ ये चीजें हमारी सोसाइटी में है ना, चंद मरसूमात हैं उनको मजहब समझ लिया है, ये तो इस्लाम तो अंदर से ठीक करता है आपको, हसद खत्म करेगा आपकी। फिर खुद पसंदी, तकब्बुर और खुद पसंदी, ये दो बड़ी खतरनाक बीमारियां। खुद पसंदी क्या है, इतने हैं नहीं जितना समझना शुरू कर दिया, इतने हैं नहीं, इसको अरबी में कहते हैं उजब, अपने आप को समझ रहे पता नहीं मैं क्या चीज हूं भाई। कुछ लोग इस खुद पसंदी में होते हैं, उसका नुकसान क्या होता है कि फिर सामने वाला उस लेवल की रिस्पेक्ट उनको देता नहीं है, तो ये टेंशन में जाते हैं, समझते हैं मैं तो इस लेवल का हूं। अब 11वें स्केल का आदमी अपने आप को 22वें ग्रेड का समझना शुरू कर दे तो टेंशन में जाएगा कि नहीं जाएगा, लोग तो उसको 22वें ग्रेड वाला प्रोटोकॉल नहीं देंगे, लेकिन उसको नहीं मिलेगा तो वो टेंशन में, तो उसका इलाज क्या होगा, जितने स्केल है उसको बताया जाए तेरे इतने हैं, ये वाला अगर तुझे प्रोटोकॉल नहीं मिलता ना तो तेरा गुस्सा ठीक है, लेकिन 22वें वाला नहीं मिलेगा मेरे भाई। एक डॉक्टर है इंडिया का, वो बड़ी दिलचस्प बातें करता है, कहता है जो जिम जाने वाले लोग हैं ना वो बूढ़े नहीं होते, वहां उसकी जिम से मुराद है जो गैर जरूरी, आपका देखो ना जिम में जो ये इतने स्पीड ब्रेकर बना रहे होते हैं ये वाकई सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि आपका वजन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बेशक वो मांस का वजन हो, वो गोश्त का वजन हो, तो भी हड्डियां इतना बोझ उठाती हैं तो इसका नुकसान होता है। तो बॉडी का वेट मेंटेन ही रखना चाहिए, चाहे फैट हो या गोश्त हो, तो वेट बहुत ज्यादा बढ़ना बहरहाल सेहत के लिए नुकसान दे। तो उसने बड़ी जबरदस्त बात की, उसने कि जो जाते हैं जिम में वो ये बूढ़े नहीं होते, सामने वाले ने पूछा जबरदस्त यार बूढ़े नहीं होते, उसने कहा वजह इसकी कि जवानी में ही टपक जाते हैं ये जवानी में ही, हकीकत है बहुत से ऐसे थोड़े दिनों में वो टहल जाते हैं वो। तो अल्लाह हमसे अखलाक के बारे में पूछेगा, अंदर से कैसे थे तुम, और फिर जाहिरी आमाल, उसमें सबसे पहले नमाज, जकात, और बार बार मुआहिदों की पाबंदी। कैरेक्टर लेस आदमी अल्लाह के यहां काबिले कबूल नहीं है। जबान का कैसा है तू, कैरेक्टर लेस, मुआहिदों की पाबंदी, जिस पर मैं एक दो हफ्ते पहले डिटेल में बयान कर चुका हूं। किराया टाइम पे आप देते हो कि नहीं देते, मालिक मकान को तरसाते तो नहीं हो, आप किसी की गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी गाड़ी समझ के चला रहे हो, या किसी की किसी और की चीज, आप देखो अपनी गाड़ी कैसे चलाते हैं और इदारों का माल कैसे इस्तेमाल करते हैं, नाप तोल में कमी तो नहीं करते, हक लेने के लिए तो पूरे पूरे गिन के लेते हो, देते हुए डंडी मारते हो। ये सारी अखलाकियात आपके शर से पड़ोसी महफूज हैं या नहीं है, आपके शर से, आपके पड़ोसी का आपके बारे में क्या तबसरा है कि यार अच्छा पड़ोसी मिल गया हमें, बड़ा खानदानी आदमी है कि इसकी वजह से हमें फायदा है। बसरा में एक ताबेई ने एक घर बेचा, कीमत डबल लगाई उसकी, किसी ने कहा इतना महंगा घर नहीं है, सस्ता होना चाहिए, उन्होंने कहा मैंने इसमें एक सहाबी रसूल रहते हैं मेरे पड़ोस में, उस पड़ोस होने की कीमत भी लगाई है, तुझे फ्री फोकट में मैं इतना अच्छा घर नहीं दूंगा जिसके पड़ोस में इतने अजीम सहाबी रहते हो, क्यों उनकी तुझे सुबह शाम जियारत होगी, उनसे तुझे सीखने का मौका मिलेगा, तो ऐसे ही पकड़ा दूं मैं तुझे, इतना इतना अजीम पड़ोस छोड़ के मैं जा रहा हूं, मैं क्यों जाऊंगा। बाज़ लोग कहते हैं ना गुडविल की भी एक वैल्यू होती है ना, तो घर की गुडविल सिर्फ इससे नहीं बनती कि ये डिफेंस में है या क्लिफ्टन में, इससे भी बनती है अड़ोस पड़ोस में हीरोइन की चर्सी रहते हैं या नेक लोग रहते हैं, मां बाप अपने बच्चों को अच्छे अच्छे इलाकों में लेके जाते हैं चर्स पी रहे होते हैं, क्योंकि पड़ोस में कौन सा बच्चा रहता था, चर्सी रहता था, तो गुडविल की भी वैल्यू होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सहाबी रसूल की कीमत लगा रहे हैं, सहाबी रसूल की कीमत नहीं लगा रहे, वो सहाबी रसूल की सोहबत की कीमत लगा रहे हैं कि इतनी अजीम सोहबत तुझे मिल रही है तो ये सोहबत मैं छोड़ के जा रहा हूं, कुर्बानी दे रहा हूं, इसके अगर मुझे इतने पैसे मिलेंगे तो दूंगा, क्योंकि मेरी जरूरत थी, उनकी कोई जरूरत थी, वरना मैं नहीं दूंगा। तो ये सारे भाई अखलाकियात और अमाल है जिसको फोकस करना है, और आप आज हम जो मजहबी तबका है ना वो इसको फोकस नहीं कर रहा, उसने चंद चीजें बना ली हैं उसी पे चल रहे हैं, तभी पूरी दुनिया में लोग अंग्रेजों की तारीफ कर रहे होते हैं, मुसलमानों की बुराइयां कर रहे होते हैं, ये दो नंबर हैं। लेकिन आप रबीउल अव्वल और मुहर्रम में देख लो, ایسا لگتا ہے مسلمان سے بڑا عاشق رسول اس کائنات میں پیدا ہوا ہی نہیں، اور کمبخت چوری کرے گا اور اس چوری سے عمرہ کرنے جائے گا۔ مسجدوں میں کرپشن کے بعد سب سے پہلے کمیٹی کہاں جاتی ہے؟ عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہے ان پیسوں سے، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ظاہر ہے حساب کتاب چل رہا ہے۔ تو ہم تو بھائی آپ دیکھ رہے ہو قرآن و سنت جو کتنے سالوں سے درس ہو رہا ہے، اسپیچز پہ بھی میرے تفسیر کے لیکچر، میں بھی کوشش کر رہا ہوں کچھ مجھے بھی وہ چیزیں ملے جن کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، وہ قرآن میں مل نہیں رہی۔ قرآن میں یہی مل رہا ہے، نماز پڑھو، اخلاق اچھے کرو، حسد نہ کرو، اور مال جمع کر کر کے جو کنجوسی کرتے ہیں برے ہیں، اللہ کو خرچ کرنے والے پسند ہیں، ماں باپ کا خیال کرو، رشتے جاری جوڑو، رشتے مت توڑو، اور بوڑھوں کا اکرام کرو، صحیح ہے نا، اور جو ہے یتیم کو کی کفالت کرو، بیوہ عورتوں سے نکاح کرو، یتیم کی کفالت کرو، یتیم کا مال مت کھاؤ، وراثت ٹائم پہ دو، ساری اگر یہ خدا کی قسم صفات ہمارے اندر پیدا ہو گئیں تو یہ مسلمان نہیں، یہ فرشتے۔ لوگ کہیں گے زمین پہ فرشتے اترے ہوئے ہیں، کیا کہیں گے؟ صحابہ کرام کئی ملک پتہ ہے اسلام، انہوں نے پورے پورے کنٹری مسلمان ہوئے صرف صحابہ کو دیکھ کے، انہوں نے کہا یار یہ عجیب لوگ ہیں، ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ صحابہ مال بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ خریدتا کہتے ہیں بھائی یہ فالٹ ہے اس میں، یہ دیکھ لو یہ کیا ہے، یہ فالٹ ہے۔ کہہ رہے فالٹ کون بتاتا ہے؟ کہہ رہے بھائی ہمارے نبی نے بولا ہے کہ جس نے اپنی چیز بیچی اور اس میں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو ہم تو نبی کے ہاتھ پہ ایمان لائے تاکہ قیامت میں نبی کے ساتھ ہو۔ اگر میں نے گندم جو ایک نبی بازار میں گئے تو اوپر خوش گندم تھی نیچے گیلی، آپ نے ہاتھ ڈالا تو نیچے گیلی گندم، آپ نے کہا کہ آپ کہ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ یہ نیچے گیلی گندم ہے اور اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ پھر آپ نے فرمایا جو دھوکہ دے کے تجارت کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو صحابہ کی ایسی خاندانی جماعت تیار ہوئی تھی نا کہ ملکوں کے ملک صرف ان کی تجارتوں کو دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں کہ بھائی یہ، پھر وہ تاجر ایسے سخی، ایسا غریبوں پہ، میں نے یہ چیز ساؤتھ افریقہ کے مسلمانوں میں دیکھی ہے، ساؤتھ افریقہ کے اور افریقہ کے جو مسلمان تاجر ہیں نا، وہاں کے غیر مسلموں پہ لٹاتے ہیں ایسے پیسہ، کہتے ہیں یہاں کے غیر مسلم ہم سے اتنا خوش ہیں، بقرعید میں کہتے ہیں یہ دے دنا دن، کہتے ہیں ایسا لگتا ہے ان کی عید ہماری عید نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو بہت غربت ہے نا، ساؤتھ افریقہ میں تو نہیں باقی افریقہ میں۔ تو میں ان کو اور پاور بھر کے آتا ہوں، میں کہتا ہوں اتنا کھلاؤ ان کا، اتنا خیال کرو، بولو بھائی یہ ہمیں کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے۔ تو مسلمان کا یہ امیج جانا چاہیے، ابھی کچھ اور ٹائپ کا امیج جا رہا ہے، وہ بالکل بہت غلط قسم کا امیج جا رہا ہے۔ ابھی بلاک ہو جائیں گے، روڈ ووڈ بند ہو جائیں گے، آپ دیکھنا سگنل مارکیٹ سے شارٹ، ایمبولینس کو راستہ نہیں ملے گا، کہیں بھی نکلو ادھر سے جلوس آ رہا ہے، ادھر سے گھما کے جاؤ، محرم میں الگ جلوس، ربیع الاول میں الگ، پھر سفر میں الگ، پورا مہینہ جلوسوں کی نظر ہی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی ہمارا اخلاقیات تو ہمارے پاس رہی نہیں ہے، تو پھر اللہ اگر مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے گا تو پھر اللہ کو منوانے، اللہ کہے گا جو میں نے قرآن میں جن چیزوں کو فوکس کیا تھا اس کو فوکس کرو گے تو مانوں گا، ادروائز نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ مفتی صاحب میری ایج 15 سال ہے اور میں ٹریڈنگ کرتا ہوں، میرا ٹریڈنگ سے 250 لاکھ، اچھا 2.5 لاکھ، 3 لاکھ کماتا ہوں، ماشاء اللہ 15 سال میں، اور میرا گھر والوں کو نہیں پتا یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام۔ کیا مطلب میرے گھر والوں کو نہیں پتا؟ اور ٹریڈنگ میرے لیے صحیح بھی ہے یا نہیں؟ بھائی حلال ٹریڈنگ اگر کر کے 2.5 لاکھ روپے کما رہے ہو، سبحان اللہ یار، سبحان اللہ، تو یہ گھر والوں کو نہیں پتا، انٹرنیٹ پہ آج کل لوگ نوٹ چھاپ رہے ہوتے ہیں، تو ابا کو اپنے بتا دو، اماں ابا کو بتا دو، ابا اماں خیر خواہی ہوتے ہیں، باقیوں کو نہ بتاؤ وہ کھا جائیں گے پھر نا، بیوقوف بنا کے کاروبار کے نام پہ لے، لیکن اباپ سے زیادہ خیر خواہ کون ہوتا ہے؟ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ عمر آپ کی بگڑنے کی بھی ہے، اس عمر میں اتنا پیسہ آنا شروع ہو جائے تو سٹے بازی میں بھی لگ سکتا ہے، لڑکیوں میں لگ سکتا ہے، 20 میں، تو ابا نگرانی کریں گے، اور ابا پہ لازم ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ابا ہی سارے کھا جائیں تو وہ ابا بن کے دکھائیں۔ مفتی صاحب کیا لکھا ہے، نیو کراچی کی ایک مسجد میں ایک امام نے یہ کہا ہے کہ شیعہ کے 12 امام اور سنی کے 4 امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے نبی کی قدم کے خاک کے برابر کون ہو سکتا ہے، کوئی بھی امام نہیں ہو سکتا، اس میں کون سی
میرے بھائی انہوں نے مفتی سے آپ نے بتایا تھا کہ
دبلے پتلے لوگوں کے لیے جو کیا لکھا ہے یار اب پورا یاد نہیں, دبلے پتلے لوگوں کے لیے ناسکا میں تین قسم کے, بھائی پڑھ کے بتانا کیا لکھا ہوا ہے.
تنقید کرنا ہے آپ کی بات, نہ آپ کے باپ کے.
آپ نے کہا تھا ایک شخص نے نوکری چھوڑ کر کاروبار کیا, اس میں خسارہ ہوا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی. روزی کا ظاہر اس کا ذمہ تو اللہ, رزق تو اللہ کے ذمہ ہے, وہی راستہ دکھاتا ہے. ہمیں رزق کی کوشش تو کرنی چاہیے نا, کیونکہ نفع ہو یا نقصان, نوکری چھوٹ جانا یا وغیرہ وغیرہ. اگر انسان, میں سمجھ گیا ان کا سوال کیا ہے. دیکھو میں نے ایک بندے کا واقعہ سنایا تھا, اچھے والی جاب چھوڑی, کاروبار کروں گا, نوٹ چھاپوں گا, کاروبار چلانی, جاب بھی گئی, خودکشی کی ہے اس نے, بچ گیا خیر. تو کہہ رہے ہیں رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے, اب انسان کوشش تو کرتا ہی ہے. یہ ان کے سوال کا خلاصہ. اس بیچارے نے کوشش کی, کوئی غلط تو نہیں کیا؟ غلط کیا. اس لیے کہ شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ دع ما یریبک الا ما لا یریبک. نبی نے فرمایا جس چیز میں تردد ہو اس کو چھوڑ دو, جو یقینی ہو اس کو لے لو. اب یقینی جاب تھی جو لگی بندی گورنمنٹ جاب تھی, پیسے آ رہے تھے, آتے رہتے, آپ کو کاروبار کا پتہ نہیں تھا چلے گا بھی نہیں کہ بھی نہیں چلے گا. آپ نے رسک لے لیا زیادہ بڑے ہاتھ مارنے کے چکر میں. تو یہ شریعت کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے. جب خلاف ورزی کرو گے تو پھر تھوڑی اللہ کا وعدہ ہے. ہاں جاب کے ساتھ ساتھ تھوڑا چھوٹا موٹا بزنس کرتے رہتے, پھر دیکھتے بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے, پھر چھوڑ دیتے جاب, تو یہ صحیح نہیں ہے.
میں ہوں اور مالی لحاظ سے ہی, کیا کہتے ہیں, میں ایم بی بی ایس اسٹوڈنٹ ہوں اور مالی لحاظ سے بھی اچھا ہوں, تو گھر والوں کو کسی طرح سے بتاؤں شادی. یہ صاحب نے مجھ سے پرسنل سوال پوچھا ہے, پرچی بھی مل گئی ہے, لیکن یہ مجھ سے مغرب سے پہلے خود براہ راست پوچھ چکے ہیں. یہ لڑکا کہہ رہا ہے میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن چکے ہیں یا بن رہے ہیں؟ کہاں گئی, ہم ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے. لاؤ تاکہ کیمرے میں آؤ تاکہ تمہارے ابا سے تمہاری پٹائی منجی ٹھکے تمہاری ابا کے ذریعے. مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن چکا ہوں یا بن رہا ہوں یا آخری سال میں ہوں, اور پرسنلی میرے پاس پیسے بھی ہیں, یعنی کہیں سائڈ بزنس بھی ہے. تو میرے ماں باپ مجھے شادی نہیں کرنے دے رہے, وہ کہہ رہے ہیں پہلے یہ, پھر وہ جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں نا, چاہے بڈھے ہو جاؤ تسلی کے ساتھ, کسی کام کے نہ رہو, جذبات ختم, اس کے بعد ہم تمہاری شادی کی بات طے کریں گے. شادی پھر بھی نہیں کریں گے بلکہ رشتہ دیکھنا شروع کریں گے. وہ بڑا لمبا چوڑا ان کا. تو میں نے اس کو بولا, اب میں جا رہا تھا, مجھے مغرب کی نماز کے لیے بھی آنا تھا, دیر بھی ہو رہی تھی. میں نے کہا دیکھو تم کما رہے ہو؟ کہہ رہے ہاں میری اپنی آمدن ہے. کہہ رہے مجھے بتائیں میرے ماں باپ نہیں کرنے دے رہے. میں نے کہا کر کے بتا دو, ہو گئی ہے بس, یہی حل ہے. نہیں میرے ماں باپ میرے بڑا. میں نے کہا جب تو کم بخت کما بھی رہا ہے, اور ڈاکٹر کا فیوچر تو بڑا مستقبل ہے, روشن مستقبل ہے ڈاکٹروں کا, تو ڈاکٹروں کا ہی تو مستقبل روشن ہے. کیونکہ ڈاکٹر صرف علاج نہیں کرتا, میڈیکل اسٹور بھی اسی کا چلتا ہے. وہاں سے اگر علاج میں کامیابی نہیں تو میڈیکل اسٹور سے پیسے بنا لو, اپنے بندے کو بٹھا دو وہاں, جمشید کو بٹھا دو وہاں, اور دوائیاں وہی لکھ کے دو جو ادھر کے علاوہ پوری کائنات میں کہیں بھی نہ ملے. کیونکہ ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے, یہ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں کہ پوری گھوم, میرے کو کئی بار کا تجربہ ہے, گھومتے رہو کہیں بھی نہیں ملے گا, ادھر سے ہی ملے گا. تو اور پھر کسی ہاسپٹل میں آپ جاب کر رہے ہو تو جو پیشنٹ تگڑا آ رہا ہے نا, اس کو اپنی کلینک کا ٹائم دیتے رہو کہ آئندہ اس ہاسپٹل, حالانکہ اس ہاسپٹل کی وجہ سے آپ آئے ہو بھائی, لیکن کھانچا تو ڈاکٹروں کے پاس بہت سارے کھانچے ہوتے ہیں, اور زیادہ ایکسٹریم لیول پہ جاؤ گے تو گورکن سے الگ کھانچے چل رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ بھی ہو سکتے ہیں, ابھی تک چیک ڈاکٹروں کی توجہ پتہ نہیں اس طرف ہے یا نہیں ہے. گورکن سے بھی کھانچا کھول لو کہ دیکھ قبروں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں, لوگوں نے یہاں دفنانے کے بجائے سوزانی ٹاؤن لے کے جا رہے ہیں. تو اب جب زیادہ لوگ مردے ہوں گے تو لوگ مجبوری ہوں گے نا, تو اتنا کوٹا اس دفعہ قبرستان کا میں نے پورا کرنا ہے. 60 سال سے عمر والے جتنے بھی ہیں میں ان کو فی الحال تیرے پاس پہنچا رہا ہوں. اور زیادہ خطرناک جاؤ گے تو ایسے ڈاکٹر بھی ہیں, گردہ نکال دیا بھائی, آپ گئے آپ کو بے ہوش کیا, آپ سمجھ رہے کہ میری ناک کا آپریشن ہو رہا ہے, ناک کا تو تھوڑا بہت کاٹ پیٹ دیا, بعد میں 6-7 سال کے بعد آپ نے چیک کیا گردہ ہی نہیں ہے آپ کا. صحیح ہے, गुर्दा बिक गया, गोरखंड से जो मैयत के पार्ट्स होते हैं ना उनपे भी चल रहा होता है कमीशन। नॉर्मल डॉक्टर ऐसे नहीं होते, ज्यादा ना घबराएं, लेकिन ये भी होता है। ये गोरखनों ने बताया कि नई नई लाश आई है, डॉक्टरों से रब्ता होता है, वो कहते हैं अभी ताजा ताजा है तो फेफड़े निकाल ले, ये निकाल ले, वो निकाल ले, जो ये हड्डी का गुदा है ना, रीढ़ की हड्डी का, ये सब चीजें इस्तेमाल होती हैं। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर रही है कि ऐसा लगता है कि इंसान के स्पेयर पार्ट्स की दुकान खुलने वाली है। आदमी जाएगा अब्बासी शहीद भाई, जरा वो घुटना मिल जाएगा, कोई अच्छा सा घुटना चाहिए, जाएगा भाई अंग्रेज का चाहिए, जैपनीज का चाहिए, यार पंजाबियों का घुटना चाहिए, उन्होंने पाए हुए बहुत खाए हुए होते हैं। ये टेक्नोलॉजी जिस इंतहा को जा रही है ना, इसको अखलाकियात का कोई बाउंड्री ना हुई इस पे, मजहब की और अखलाकियात की, तो ये स्पेयर पार्ट्स की दुकान होगी। यार ये वाला किडनी नहीं, वो वाला किडनी निकाल के दिखा, तो चर्सियों के गुर्दे सस्ते मिल रहे होंगे वगैरह वगैरह। चार शादियों वाला मरेगा उसके तो बहुत रेट होंगे, लेकिन उसके घुटने के रेट नहीं होंगे, उसके घुटने के खैर तो कहां से कहां चले गए यार। ये लेमन का वो पीने से ये होता है, लेमन शहद पियो ना, ये मसला हो जाता है, इसलिए मैं पीता नहीं इस मौके पे। खैर क्या बात चल रही थी यार ये बात, तो मैंने उसको बोला डॉक्टर का मुस्तकबिल तो भाई बहुत रोशन है, क्या मसला है। तो उनको मैंने बोला कर लो और बता दो हो गई है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। तो ये उन साहब का पर्चा था, बस काफी है मेरा ख्याल। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।